अथ सप्तविंशोऽध्याय श्री शुक उवाच गोवर्धने धृते शैल आशारद रक्षिते ब्रजे गोलोकाद व्रजत कृष्णं सुरभिः शक्र एव च। बिभिक्त उपसंगम्य व्रीडितः कृतहेलनः पस्पर्शपादयोरेनं क्रीटे नार्कवर्चसा दृष्टश्रुतानुभावस्य कृष्णस्यामित तेजसः नष्ट त्रिलोकेष्मद इन्द्र आह कृताञ्जलिः। इन्द्र उवाच विशुद्धसत्त्वं तव धाम शान्तं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो नो विद्यते जाते ग्रहणानुबन्ध। कुतो नु तदहे तव ईश सतत्कृता कुतो नु तदहे तव ईश सतत्कृता लोभादयो ये बुधलिंग भावः तथापि दण्डं भगवान् विभर्ति धर्मस्य गुप्त्यै खलनिग्रहाय। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरात्ययः कालौपात दण्डः हिताय स्वेच्छातनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिनां ये मद्विधाज्ञा जगदीश मानिनः त्वं वीक्ष्य काले भयमाशु तन्मदम् हित्वार्ज मार्गं प्रभजन्त पस्मया इहा खलानामपि तेऽनुशासनम् स त्वं ममैश्वर्य मदप्लुतस्य कृतागसस्ते विदुषः प्रभावम् क्षन्तुं प्रभोऽर्थार्हसि मूढचेतस नैवं पुनर्भून्मतिरीश मे सति तवावतारोऽयम् तवावतारोऽयमधोक्षदेह स्वयं भराणाम् उरुभार जन्मनाम् चमूपतीनाम भवाय देव भवाय जुष्मत् चरणानुवर्तिनाम् नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः स्वच्छन्दोपातदेहाय विशुद्ध ज्ञानमूर्तये सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः मयेदं भगवन् गोष्ठ न साया सारवायुभिः चेष्टितं विहते यज्ञे मानिना तीव्रमन्युना त्वयेषानुगृहीतोऽस्मि ध्वस्तस्तम्भो वृथोद्यमः ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गतः श्रीशुक उवाच एवं संकीर्तितः कृष्णो मघोना भगवानम् मेघगम्भीरया वाचा प्रहसानिदमब्रवीत् श्रीभगवानुवाच मया ते कारि मघवान् मखभङ्गो नु गृह्णता मदनुस्मृतये नित्याम् मत्तस्येन्द्रश्रियाभृशाम् मामैश्वर्ज श्रीमदान्ध दण्डपाणिम् न पश्यति तम् भ्रंशयामि सम्पद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहान् गम्यताम् शक्रभद्रम् वः क्रियताम् मेऽनुशासनम् स्थीयताम् स्वाधिकारेषु युक्तैर्वः स्तम्भवर्जितैः अथाह सुरभिः कृष्णम् अभिवन्द्य मनस्विनी स्वसन्तानैरुपामन्त्र्य गोपरूपिणमीश्वरम् सुरभिरुवाच कृष्ण कृष्ण महायोगी विश्वात्मन् विश्वसंभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युता त्वं नः परमकं दैवाम् त्वं न इन्द्रो जगत्पते भवाय भवगो विप्र देवानां ये च साधवः इन्द्रं नस्त्वाभिषेच्याम ब्रह्मणानोदिता वयाम् अवतीर्णोऽसि विश्वात्मन् भूमेर्भारापनुक्तये श्रीशुक उवाच सब लोग किताब पर ही देखिए एवं कृष्णमुपामन्त्र्य सुरभिः पयसात्मनः जलैराकाशगङ्गाया ऐरावत्करोद्धृतैः इन्द्रः सुरर्षिभिः साकम् नोदितो देवमातृभिः अभ्यसिञ्चत् दासार्हम् गोविन्द इति चाभ्यधार। भगवान का गोविंदाभिषेक हुआ, उस समय बहुत बड़ा उत्सव हुआ, देवता सब आए थे। तत्रागतास्तुं गुरु नारदादयो गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारणः जगुर जसो लोक मलाप हम हरे सुरांगना सम ननितुर मुदान्वितः तम तुष्टुर देव निकाय केतवो व्यवाकिरंश्चाद्भुत पुष्प वृष्टिभिः लोकः परां निर्वृतिमाप्नुवन्तय लोकः परां निर्वृतिमाप्नुवंस्तयो गावस्तदा गामनयन् पयोद्रुतान् नानारसौघा सरितो वृक्षायासन् मधुश्रवः अकृष्टपच्यौषधयो गिरयो बिभ्रदुन्मणि कृष्णेऽभिषिक्तये तानि सत्त्वानि कुरु नन्दन निर्वैराण्यभवंस्तात कुर्राण्यपि निसर्गतः इति गो गो कुलपतिं गोविन्दम् अभिषिच्य सः अनुज्ञातो ययौ शक्रो वृतो देवादिभिर्दिवान् देवे वास। बार बार उसी श्लोक को गाने की इच्छा हो रही है। सुनिए, एक बात बताना है। हरिबोल। संस्कृत के वर्ण होते हैं कुछ है, तो स्वर वर्ण है, तो कुछ संस्कृत पढ़ने वाले जानते हैं इस बात, और व्यंजन वर्ण तो क ख ग घ ये सब जो है व्यंजन वर्ण है, और अ आ ई उ ए ये जो है स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण है मालिक माना जाता है, और व्यंजन नौकर। तो जब स्वर वर्ण आता है कोई, तो व्यंजन वर्ण जो है वो झुक जाता है उसके सामने। जैसे इसमें है गोवर्धने धृते शैले, वास्तव में शैले है सप्तमी में, लेकिन ल के ऊपर एकार जो है वो लुप्त हो गया, स्वामी के आगे झुक जाता है। जैसे कोई पगड़ी उतार देता है किसी मालिक के आगे, तो वैसे ये अपनी विभक्ति लुप्त कर देते हैं। शैले शैले होना चाहिए, लेकिन उधर आ रहा है। इसको भी रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी जी ने सर्वेश्वर कहा है स्वर व्यंजन को। नाम ही दिए हैं सर्वेश्वर हरि नमामृत व्याकरण में। तो उसके अगर वो बाद में रहे तो ये अपनी विभक्ति को लुप्त कर देता है, थम जाता है। तो उच्चारण ऐसे होगा गोवर्धने धृते शैला, चूंकि आ रहा है तो इस पर एक अपनी विभक्ति को दबा लिया। और इसमें देखिए विविक्त, वास्तव में विविक्ते शब्द है, लेकिन उधर ऊ आ रहा है तो इसलिए विविधता उपसंगम में। और नीचे देखिए नष्ट त्रिलोकेश मदह, इसमें विसर्ग है द में, लेकिन विसर्ग लुप्त हो गया चूंकि ई है, और इंद्र होना चाहिए इंद्र, उस पर भी विसर्ग लेकिन फिर आया गया तो इंद्र। सेवक ऐसे दब करके चलते हैं स्वामी के आगे, तो जीव गोस्वामी सर्वेश्वर कहते ही। श्री शुक उवाच, अब इसमें भी श्री शुक है, श्री शुक लेकिन क में विसर्ग लुप्त है चूंकि ऊ है, तो श्री शुक उवाच। बड़े सामान्य नियम है संस्कृत के कुछ। श्री शुक उवाच, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, गोवर्धने धृते शैले। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया और आसारात धारा संपातों से, भयानक वर्षा से रक्षिते ब्रजे, ब्रज की रक्षा हुई, तब गोलोकात, गोलोक से, इसी प्राकृत जगत के गोलोक से आब्रजत आए कृष्णम, कृष्ण के पास, कृष्ण के प्रति चले, कृष्ण के पास जाने के लिए चले। सुरभि नामक कामधेनु, सक्रह, कौन बच्चा रो रहा है, सक्रह देवराज इंद्र एवा ही च, और सप्तविंशे तदा लक्ष्य कृष्णस्य प्राभवं परम वर्णते सुरभिन्द्राभ्याम अभिषेक महोत्सव। इस अध्याय में इंद्र और सुरभि कामधेनु के द्वारा किए गए भगवान के अभिषेक का वर्णन, अभिषेक महोत्सव। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब भगवान ने गोवर्धन धारण किया और इंद्र का सारा उद्यम, ब्रजनाश का उद्योग सब विफल हो गया, तो उस समय गोलोक से सुरभि और इंद्र भगवान के पास चले आए ब्रज में। गोवर्धन का अर्थ होता है गाह सुख भोगादिना नित्यम वर्धयती इति गोवर्धन, जो गौओं को बढ़ावे सुख दे करके, भोग दे करके, घास दे करके, पानी दे करके, सब सुविधा दे करके जो गौओं का पोषण करे, तो उसको गोवर्धन कहते हैं। तो गाह सुख भोगादिना नित्यम वर्धयती इति तथा तस्मिन् इति महावृष्ट्या तथा गवाम दुख शंका निरस्ता। इंद्र के द्वारा जो इतनी भारी वर्षा हुई, तो इससे गौओं को कोई दुख नहीं हुआ, महावृष्टि हुई, लेकिन भगवान की कृपा से गोवर्धन धारण के द्वारा भगवान ने गौओं की रक्षा कर ली। गौओं की कौन रक्षा किया, तो गिरिराज गोवर्धन जी रक्षा की, इसीलिए उनका स्मरण कर रहे हैं गोवर्धन, गोवर्धन, गोवर्धने धीते शैले, और गोवर्धन को भी कोई दुख नहीं हुआ क्योंकि वर्षा से गौओं की रक्षा हुई और गोवर्धन जी को क्लेश नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ, बल्कि शिलादि छाल ने न तृणादधिक संपत्त्या च समृद्धि रेव जाता इति सूचित। बल्कि इंद्र की भारी वर्षा से पत्थर उत्थर और स्नान कर लिए, साफ हो गए। और गोवर्धन जी में वर्षा खूब हुई थी तो इसके बाद घास खूब बढ़ी, पानी पाकर के घास बढ़ जाता, तो घास बहुत हुआ तो गऊ को भी सुख हुआ और गोवर्धन जी और हरे भरे हो गए, बहुत अच्छा हुआ। और हरे भरे हो गए तो तृण आदि ज्यादा हुआ, घास आदि ज्यादा हुआ तो गऊ उससे और मोटी हो गई चर करके और दूध और बढ़ा उनका। तो इंद्र की वर्षा से लाभ ही हुआ, कोई हानि नहीं हुई। तो गोवर्धने धृते शैले, गोवर्धन पर्वत के धारण किए जाने पर और आसारा धारा संपात से भारी वर्षा से ब्रजे रक्षिते सती, जब ब्रज की रक्षा हुई तब गोलोक से, प्राकृत गोलोक से, एक गोलोक अप्राकृत जगत में है जो भगवान श्री कृष्ण का धाम है और यह गोलोक प्राकृत है जहां गौएं रहती हैं, तो वहां से सुरभि और शक्र एव का अर्थ है केवल। केवल मतलब इंद्र आए तो बहुत साज समान परिवार आदि लेकर के नहीं आए, क्षमा मांगने आ रहे थे इसलिए अकेले आए और वाहन भी नहीं लाए। ब्रज का नाश करना था तो हाथी पर चढ़ कर आए थे, अब उनको विश्वास हो गया ना कि अब मैं आगह अपराध किया इसलिए नाग पर चढ़कर नहीं आए, निरपराध स्थिति में नहीं आए हाथी छोड़ करके आए। हाथी बाद में आया जब भगवान को देखे कि बिल्कुल प्रसन्न है, तब अभिषेक किए तब सारा फोन ऑन करके हाथी उठी सारा मंगाए एकदम ठीक है, कोई मेरे भगवान तो कृपामय है, उनमें क्रोध आ ही नहीं सकता है। पहले बहुत संकेत आ रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, भगवान पिटाई करेंगे कि क्या करेंगे, तो आए क्षमा मांगने के लिए। वाहनादि परिवार विहीन केवलम इंद्र एव इत्यर्थ है। शक्र एव शब्द से ध्वनित हो रहा है इंद्र केवल आए, कोई सेवक नहीं आया या पार्षद नहीं आए मरुदगण आदि, और अपना ऐरावत प्रसिद्ध हाथी भी नहीं आया, पैदल आए। आकाश में ही चलते हैं देवता लोग, तो वो भी कभी पैदल चलते हैं, कभी हाथी से चलते हैं, कभी रथ से चलते हैं, विमान से चलते हैं, तो पैदल भी चल सकते हैं। तो जो आदमी जमीन पर चला है वो सोच सकता है कि आकाश में कोई कैसे पैदल चलेगा जो आकाश में ही हमेशा चलते हैं तो पैदल चलना होगा तो आकाश में ही चलेंगे ना, हाथी छोड़ करके आए। हरीश्वरी जी कहते हैं कि पहले इंद्र आए थे तो ये दिखा रहे थे कि मैं न आगह नाग में स्थित हूं, अपराध नहीं किया हूं, मैं जायज किया हूं वो आक्रमण करने के पहले ब्रज पर, और अब हाथी छोड़कर नाग को छोड़ करके आए, उनको उनके मन में हो रहा था कि तो बहुत भारी अपराध किया हूं अपराध किया हूं। तो आए, ब्रज की रक्षा हुई। इस ब्रज का क्या मतलब है, श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं, ब्रज शब्द न तत्रत्या मानुषा पशु पक्ष्यादयोपि गृहीता। ब्रज मतलब वहां के मनुष्य पशु पक्षी सभी का, जब सबकी रक्षा हो गई, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, तब गोलोक से इंद्र, सुरभि और इंद्र आए, सुरभि और शक्र। सौ अश्वमेध यज्ञ इंद्र किए हैं इसलिए इनका नाम है शक्र। संक्षेप में शतक्रतु, शतक्रतु है इनकी एक उपाधि है, सौ यज्ञ किए हैं। तो शत का स और क्रतु का क्र लेकर के संक्षेप में साइन करते होंगे शक्र, शक्र का पहले से ही संक्षेप में लिखने की सब प्रथा है। जैसे अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी, तो अभय चरण को कहते एसी, अभय से ए और चरण का सी, एसी। कितने लोग तो जानते ही नहीं कि एसी का क्या मतलब हुआ। अभय चरण, अभय चरण न लिख करके उसको एसी। और अब तो और ज्यादा इस कान में संक्षिप्तीकरण चल रहे हैं। प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ऑब्सेंस। क्या लिखते हैं? तो पी ए एम माई और एच हम्बुल का और ओविसेंसेज का ओ पाम। और जो बोलते भी हैं और आल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद, कोई संक्षेप नहीं करते। आल का ए लेते हैं और उसका जी, ए जी एजीएसपी, अरे श्रीला का एस और प एजीएसपी, एजीपीएस जो भी हो। तो ये पहले की ही परंपरा है। भगवान इंद्र के लिए भी बस शक्र चलता है और शतक क्रतु भी बड़ा लगता है देवताओं को। तो शतक क्रतु का पहला पहला अक्षर लेकर के शक्र, शक्र कहते हैं। सभी लोग कहते सौ यज्ञ इन्होंने किया है, तो कौन इतना कहे कि शतक क्रतु या सौ यज्ञ, शक्र। शक्र, शक्र ये आए किसके पास? कृष्णम पर ब्रह्म है, स्वयं भगवान के पास ये आए दोनों। आब्रजत, आकार्थ सम्यक, शरणागतत्व न आजगाम। उस बार आए थे ब्रज को का विनाश करने के लिए, अब सारा घमंड टूट गया। अब आए आब्रजत का अर्थ शरणागतत्व न आजगाम, अब शरण लेने के लिए, क्षमा मांगने के लिए आ रहे हैं। गोवर्धने धृते शैले इति शक्रस्य भय न आगमने हेतु। क्यों आए इंद्र? गोवर्धने धृते शैले, जब भगवान ने गोवर्धन उठा लिया और गोवर्धन उठा करके आशारद रक्षिते ब्रजे वर्षा से बचा लिया, तब इंद्र भगवान को समझे, भय हो गया और आए भगवान से माफी मांगने। दूसरे ग्रंथ में लिखा गया है कि इंद्र के पत्नी ने इंद्र को बहुत समझाया कि अब जाइए, क्षमा मांगिए, क्षमा मांगिए। वो कह रहे थे कि मैं कौन मुंह दिखा करके जाऊंगा, आ नहीं रहे थे। तो उसने प्रीच किया इनको, अब जाइए वृंदावन की यात्रा कीजिए। तब इंद्र आए, बहुत लज्जित थे, बहुत लज्जा में थे, इसलिए विविक्त विविक्ते उपसंग में, विविक्त मान निर्जन स्थान में, निर्जन स्थान में भगवान की खोज कर, भगवान गांव से बाहर आए थे, इस समय जो गोविंद कुंड है उसी के पास वे आए। इंद्र का अभिप्राय समझकर सबके अंतर्जामी हैं, बेचारा एकांत में क्षमा मांगना चाहता है, तो भगवान ने अवसर दिया, उसमें तो बंद था, वे आ गए किसी बहाने से, कोई गाय भूली है या क्या हुई है, कोई सखा नहीं लिए, अकेले चले गए। तो विविध तो उपसंगम्य क्यों? क्योंकि कृत हेलना अतः ब्रीड़ित, कृत हेलना हेलनम, भगवान के प्रति अवहेलना किए थे, बहुत दुरुक्ति बोले थे। कृष्णम मर्त्यम उपासित गोपामे चक्रुरप वाचालम बालिसम और स्तब्धम, तो क्या कथा है, बच्चालम बालिशम, ठीक ही है याद नहीं है तो स्तब्धम पंडित मालिनम, इस तरह से बहुत दुरुक्ति बोले थे। ऐसे थर्ड क्लास के आदमी का भरोसा लेकर के मुझ देवता का अपमान किए, बहुत दुरुक्ति बोले थे, खराब वाक्य बोले थे और नाश करने के लिए प्रलय के बादलों को भेजे थे। इनको कहते कृत हेलना, कृष्ण की अवहेलना किए थे, बहुत निरादर किए थे। तो इस कारण से व्रीड़ित प्राप्त लज्जा, व्रीड़ा मैंने लज्जा, व्रीड़ित मैंने लज्जित, बहुत लज्जा में थे। इसलिए विविक्त विजने उपसंगम में, एकांत में जो रहे होंगे आकाश में से छिप करके, कब भगवान एकांत में जाएंगे, तो वहां गए एकांत में गोविंद कुंड पर। उपसंगम्य, उप का अर्थ है निकट और सम माने सम्य, बिल्कुल झुके हुए, कोई भी साजबाज नहीं रखे थे, सिर पर मुकुट था, मुकुट धारण करके मुकुट से प्रणाम करने से और दैन्य प्रकट होता है, तो मुकुट लगाए जा करके अर्क वर्चसा किरीटेन एनम पादय पस्पर्श, एनम मन श्री कृष्णम गए और सष्टांग गिर गए प्रणाम, सष्टांग प्रणाम। वही व्यक्ति जो ब्रज का नाश कर रहा था, कह रहा था कृष्ण मनुष्य है, ये है वो है, बहुत बोलता है। देखिए जो सत्य बात होती है हो प्रकट हो ही जाते हैं। कृष्ण स्वयं भगवान है, इंद्र आदि सब इनके सेवक हैं, सारे जगत के ईश्वर हैं, पोषक हैं भगवान, भले वो गोचारण कर रहे हैं, इससे क्या होता है, लीला कुछ भी करें परंतु वे तो भगवान हैं। तो इंद्र आ करके उनके शरण में गिरे और मुकुट से चरण का स्पर्श किए, मुकुट से भगवान के चरण नख पर थोड़ा सा टच किए होंगे मुकुट से, दम किरीटेना अर्क वर्षा। तो सुखदेव गोस्वामी ध्यान दे रहे हैं कि भगवान के चरण के पास जो मुकुट गया है तो कैसा है, तो लगता है जैसे फोटो उपाड़ रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो इंद्र का मुकुट कैसा है, अर्क वर्च सा, वर्च माने प्रकाश, अर्क माने सूर्य, सूर्य से जैसे प्रकाश निकलता है ऐसे उनके मुकुट से प्रकाश निकल रहा है, इतना अच्छा मुकुट था। सष्टांग प्रणाम करके और मुकुट से थोड़ा थोड़ा भगवान के चरण नख को छुआ रहे थे। हरिश्वर जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बड़े व्यक्ति का अपराध करता है तो डायरेक्ट क्षमा मांगने में लज्जा आती है, तो बीच में किसी को मध्यस्थ रख लेता है, वही मिलाता है, तो ऐसा लगता है कि भगवान के चरण में और इंद्र से संधि कराने के लिए मुकुट ही मध्यस्थता का काम कर रहे हैं, ऐसा है ना। किसी के पास जाने में डर लगता है अपराध के, तो चलिए हम साथ में रहेंगे, आपको नहीं डांटेंगे, नहीं मारेंगे, नहीं पीटेंगे, तो मुकुट ही मानो मध्यस्थता का काम कर रहा है, संधि करा रहा है भगवान के चरण में और इंद्र में, क्षमा मांग रहे। कौन क्षमा मांग रहा है जानते हैं, जिसने सौ अश्वमेध जग किया है और जो स्वर्ग के अधिपति हैं, वास्तव में वर्षा के अधिपति हैं, स्वर्ग में सभी देवताओं के, अगर देवता मान लीजिए कोई साधारण मंत्री हैं तो वे प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन स्वर्ग के प्राइम मिनिस्टर, यहां के नहीं, यही धारणा नहीं करनी चाहिए। यहां के प्राइम मिनिस्टर का तो कोई खास महत्व नहीं है, बहुत कमजोर शरीर होता है, रोगों से भरे रहते हैं, वो भी दूसरे के द्वारा चुना हुआ पद होता है, 5 साल के बाद भय बना रहता है कि अब बनेंगे कि नहीं बनेंगे। कि इंद्र का पद ऐसा नहीं है, वो इलेक्शन से नहीं, सिलेक्शन से बने हैं। हाँ, और डायरेक्ट भगवान सिलेक्ट करते हैं, ये कहते यह इंद्र बनेगा, ये सप्तर्षि बनेंगे, ये मनु होंगे इत्यादि। ब्रह्मा जी अपॉइंट करते हैं लेकिन सेलेक्ट भगवान करते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष के बाद वोट दे करके उनको हटा दिया जाएगा। भगवान बनाते हैं, ब्रह्मांड की गवर्नमेंट है, पूरे ब्रह्मांड की सरकार। तो इंद्र का पद बहुत बड़ा है, लेकिन कोई भी हो भगवान के सामने तो इंद्र आए और यही अपना कर्तव्य समझे कि प्रभु से क्षमा मांग लिया जाए। ये तो हमारे पिता हैं, हमारे गुरु हैं, सब कुछ है, हमें क्षमा कर देंगे। तो एनम पस्पर्श, भगवान का स्पर्श किए, कहां स्पर्श किए, एनम मन श्री कृष्णम चरण नख का स्पर्श किए, चरण नख मुकुट से। दृष्ट श्रोतानुभाव से कृष्ण श्यामित्य, वे देखे श्री कृष्ण का अनुभव प्रभाव, श्री कृष्ण में कितना बल है और ब्रजवासियों से कितना प्रेम करते हैं, ये उन्होंने देखा। खेल खेल में बरसाती छत्ते की तरह गोवर्धन पर्वत को उठा लिए और ब्रज की रक्षा किए, इसको तो इंद्र ने साक्षात देखा धारण किए। तो इसको कहते हैं दृष्ट, अमित तेज सह कृष्ण से दृष्ट अनुभाव जेन सह इंद्र, और श्रुत और ब्रह्मा जी से अनेक बार इन्होंने सुना सुना है कृष्ण के महिमा को। ब्रह्मा जी जब बछड़ा चुराए थे और भगवान उनको चक्कर में डाल दिए थे तो वो भी क्षमा मांगे, क्षमा मांगे तो जाकर के देवताओं से सब कहे, इसको श्रुता कहते। ब्रह्मा जी के मुख से भगवान कृष्ण की महिमा प्रभाव सुने थे और यहां गोवर्धन धारण किए जाने पर आंख से देखे थे। दृष्ट श्रुत अनुभाव अथवा दृष्ट श्रुतानुभाव से कृष्ण से, ये भी हो सकता है। यह इंद्र का विशेषण है चाहे कृष्ण का विशेषण है, कृष्ण का विशेषण होगा तो इसका अर्थ है कि जिनके अनुभव भक्तों के प्रति प्रेम और गोवर्धन धारण आदि लीला को जिन लोगों ने सुना और देखा, कृष्ण की लीला आदि को सुना गया है, देखा गया है, तो ऐसे अमित तेजस्वी अमित प्रभावशाली भगवान श्री कृष्ण का यह सब देख करके नष्ट त्रिलोकेश मद, मैं तीनों लोकों का ईश्वर हूं, ये जो मद था इंद्र को वो नष्ट हो गया, नष्ट हो गया था। अभी आए इसी समय नहीं, उसी समय स्वर्ग में जब थे तभी नष्ट हो गया। नष्ट त्रिलोकेश मद, नष्ट अपगत त्रिलोकेश अहम इति मद गर्व जस्य स इंद्र। इंद्र का गर्व नष्ट हो चुका था और भगवान की महिमा को पूरा तरह से समझ रहे थे, देखा था और ब्रह्मा जी आदि के मुख से सुना था प्रभाव भगवान का। तो यहां आए, इसके बाद प्रणाम किए, प्रणाम करने के बाद कृतांजलि ही और हाथ जोड़कर भगवान के सामने अंजलि बांध करके इदम आह यह बोले, इदम का अर्थ है बक्षमाणम, आगे जो कहा जाएगा इस प्रकार से बोले, क्षमा कराने के लिए भगवान की स्तुति करने लगे। तो बोले इंद्र उवाच, ये इंद्र उवाच कौन बोल रहा है, तो इंद्र उवाच कौन बोला है, है? हाँ, ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं कि इंद्र ही इंद्र उवाच बोले। स सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इंद्र बोले, यह बोले, क्या बोले, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाह न विद्यते ते ग्रहणान। तत्र मम अपराधम क्षमस्व इति वक्तुम, मेरा अपराध क्षमा कीजिए यह कहने के लिए, तव तावत अपराधो नास्ति एव त्वया अनुग्रह एव कृत इत्याह चतुर्भिः। तो भगवान इंद्र ये कहना चाहते हैं कि हे प्रभो, आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए, यह कहने के लिए कहते हैं कि वास्तव में आपका अपराध हो ही नहीं सकता है। मतलब है, आप कभी किसी कोई अपराध किया है आपका, ये आप मानते ही नहीं है। वास्तव में भगवान का अपराध हो भी नहीं सकता है। जैसे भगवान को कोई डंडा मारना चाहे तो स्पिरिचुअल है, वो लगेगा ही नहीं। कोई गाली दे तो ये सब प्राकृत शब्द हैं और प्राकृत वस्तु को टच कर सकते हैं। इस संसार में कोई किसी को गाली देता है तो वास्तव में वो आत्मा तक गाली नहीं पहुंचता है। वो आदमी मान लिया है कि ये गाली है, ये प्रशंसा है, तब मानता है। तो गाली देने से क्या हुआ, आत्मा तक नहीं पहुंचता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र आत्मा को नहीं काट सकता है, हवा नहीं सुखा सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, अग्नि नहीं जला सकता। तो इसी तरह से कोई शब्द भगवान को टच नहीं करेगा, आत्मा को टच नहीं कर सकता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप गाली दीजिए तो गाली का मतलब ही नहीं समझते हैं, है ना? गाली का मतलब नहीं समझते हैं। कई बार बच्चों का अपमान कर दिया जाता है कुछ बोल करके, लेकिन कभी हंसते रहते हैं, जानते ही नहीं, अक्षर का अर्थ ही नहीं जानते। एक बार भगवान बुद्ध को एक व्यक्ति खूब गाली दिया, खूब गाली दे रहा था, तो फिर भी वो हंस रहे थे। तो किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अरे वो आपको इतना गाली दिया है, आपको दुख नहीं होता है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं, हाँ वो गाली दिया लेकिन मैंने एक भी लिया नहीं, दे रहा था लेकिन लिया नहीं। अब वो व्यक्ति हंसने लगा कि ऐसा साधु, ग्रहण नहीं करते हैं भगवान किसी के अपराध को। भगवान श्री कृष्ण तो माने ही नहीं कि इंद्र ने मेरा अपराध किया, वो तो बल्कि खुश थे कि हमको गोवर्धन उठाने का अवसर दिया। यह तो बात थी, लेकिन वास्तव में भगवान ग्रहण नहीं करते। जैसे बिल्कुल छोटा बच्चा हो और मां को मारता है तो मां उसको अपराध नहीं मानती है, बल्कि और खुश होती है। बिल्कुल छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा नहीं, उसे खुशी होती है। और वो मारता है कोई वस्तु लेने के लिए, चाहिए तो क्या मां उसको अपराध मानती है? या छोटा बच्चा बिल्कुल गर्भ में है, पेट में है, अगर पेट में बच्चा इधर उधर हिले, लात मारे, तो क्या मां उसको मानती है कि अपराध कर रहा है? बल्कि वो खुश होती है कि मेरा बच्चा ठीक है, जी रहा है, अच्छा है, उसको प्रसन्नता होती है। तो वैसे ही मान लीजिए ब्रह्मा जी हैं, या इंद्र हैं, या भगवान शिव हैं, कोई अगर कदाचित माया के प्रभाव में भगवान कृष्ण का कोई अपराध कर दिया, गाली दे, तो भगवान उसको अपराध मानते ही नहीं है। आप ही देखिए भगवान का धैर्य कितने बड़े हैं, कभी उन्होंने ब्रजवासियों से कहा इंद्र के विषय में कोई गाली दिया नहीं। ठीक है, उनकी वही बुद्धि है, अपन वर्षा करें, हमारे जो काम है वो करें, हम गोवर्धन उठाते। इंद्र को गाली नहीं दिया, इंद्र उसमें ये मान लिए कि भगवान उनका अपमान कर रहे हैं, तो अपमान भी नहीं किए, कुछ भी नहीं किए। उन्होंने शुरू में कहा कि वर्षा अपने आप होती है, हमको क्या मतलब है, हम लोग गोवर्धन जी की पूजा कर रहे हैं। उसके बाद जब इंद्र वर्षा करने लगे, सबकी जान मारने के लिए, गऊं की हत्या के लिए प्रयास, फिर भगवान ने उनके पास गाली नहीं भेजा या किसी के पास गाली नहीं दी इंद्र के प्रति। ठीक है, इंद्र मान लिए थे कि हमारा अपमान किया जा रहा है, यज्ञ नहीं हुआ इसी पर। यज्ञ तो हर एक साल होता था, इंद्र की पूजा होती थी, भगवान की पूजा तो नहीं हो रही थी, लेकिन भगवान तो अपनी पूजा के लिए कभी कहे नहीं। तो वहीं पर भगवान थोड़े कहे कि इंद्र की पूजा न करके मेरी पूजा करो, नहीं, उन्होंने कहा गोवर्धन की पूजा, गौओं की पूजा, ब्राह्मणों की पूजा, यही सब कहे। तो भगवान वास्तव में इंद्र का अपराध नहीं माने थे, बल्कि उनके हृदय में करुणा उत्पन्न हो रही थी कि इसको इतना ज्ञान हो गया है, इतना अभिमान में है, इसका अभिमान रोग दूर करना चाहिए, और इसी के लिए भगवान ने यज्ञ का प्रवर्तन किया। तो इंद्र ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप तो किसी के द्वारा कोई अपराध मानते ही नहीं हैं, उसको अपराध गिनते ही नहीं, और उल्टे हमारे प्रति जो आपने व्यवहार किया तो अनुग्रह ही किया है, और आप कृपा किए हैं, हमने आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया लेकिन आप हम पर अनुग्रह ही किए। तत्र महा अपराधिनी अपि स्वस्मिन् श्री भगवत श्रीमुख प्रसत्या कोपाभावम अवधार च आश्वस्त सन अस्तुवन आदौ निजापराधम क्षमापयितुं परमेश्वरस्य तदात्मासु कोपावज्ञादिकम् न कथंचित् कदाचिदपि घटते, वयम् तु तन्माया मोहिताः संसारिणो बहुधा नित्यापराधिना एव इत्याह विशुद्धम् इति। इंद्र यही कह रहे हैं कि जब इंद्र ने देखा श्री भगवान का मुख बिल्कुल प्रसन्न है, इंद्र जब आए प्रणाम किए तो भगवान हंस रहे थे, ऐसा नहीं था कि अब पूरा मुंह फेर ले आया फिर बदमाश, इतनी वर्षा करके मुंह दिखा रहा है, एक साधारण आदमी भी ऐसा बोलने में हिचकेगा नहीं, अरे तू ईश्वर है, चलो हटो नहीं तो अभी गोप आएंगे और लाठी से खराब कर देंगे, मरम्मत कर, तुम्हें लज्जा नहीं आती, गऊं की हत्या कर रहे थे, कह सकते थे ना, लेकिन भगवान तो हंस रहे थे, कुछ भी नहीं कहे, बल्कि इस मूड में थे कि इंद्र हमसे कुछ कहेंगे, हमारे अतिथि हैं, इनका स्वागत करेंगे, वो तो लगे बोलने नहीं तो इंद्र के प्रति, इंद्र बोलने लगे नहीं तो भगवान तुरंत ही सजा दही मंगाए होते उन्हीं गऊओं का जिन गऊओं की वो हत्या करने जा रहे थे, तो मंगाए होते खिलाने पिलाने स्वागत करने के लिए, लेकिन वो आते ही गिर गए और बोलने लगे तो भगवान को देखे उठ करके तो भगवान बिल्कुल प्रसन्न थे, नाम मात्र भी कोई रोष का चिन्ह नहीं, कुछ नहीं। तो श्रीमुख की प्रसन्नति से, भगवान के श्रीमुख की प्रसन्नता से कोपा भावम अवधार्य, ये समझ गए कि भगवान में कोप नहीं है, थोड़ा भी क्रोध नहीं है, जैसे लगता है कि भगवान को स्मरण ही नहीं है कि इंद्र ने वर्षा किया था, इतना बड़ा उत्पात किया था, इसका कोई स्मरण नहीं, तो अपने अपराध की क्षमा करा रहे हैं। सबसे पहले कहते हैं कि वास्तव में आप परमेश्वर हैं और परमेश्वर होने के कारण आपके ही सब अंश हैं, जितने जीव हैं, जितनी आत्माएं हैं आपके अंश हैं, तो अपने ही अंश के प्रति आप में कोप या अवज्ञा आदि नहीं है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की जीभ अपने ही दांत से कट जाती है तो क्या कभी दांत पर क्रोध करता है वो? और अवश्य कटती होगी जीभ कभी कभी ना। हम तो कई बार देखे हैं कि हमारे जीभ को दांत दबा देता है, तो क्या कभी लोढ़ा लेकर मारकर तोड़ दिए? अपने अंग पर क्रोध नहीं होता। तो सभी जीव तो भगवान के अंश हैं, भगवान परम ईश्वर हैं और सब उनके अंश हैं, बच्चे हैं सब कुछ। तो उनके द्वारा कुछ हो भी जाए तो भगवान अपनी अवज्ञा नहीं मानते हैं, अवज्ञा नहीं मानते और क्रोध नहीं करते। यही बात भगवान इंद्र कह रहे हैं, कथनचित कदाचिदपि न घट, कभी किसी भी हालत में और कभी भी भगवान क्रोध नहीं करते हैं, अपनी अवज्ञा मानते ही नहीं, उनकी अवज्ञा हो ही नहीं सकती है। वयम तु तन्माया मोहिता, लेकिन हम तो आपकी माया से मोहित हैं, संसारी हैं, तो नित्य अपराध करते रहते हैं और अपना अपमान मानते रहते हैं। हम लोग आपकी माया से मोहित हैं तो हम मान लेते हैं कि हमारा अपमान हो रहा है, हमको ये गाली दिया, हमको मारा है, लेकिन आप तो पूर्ण सच्चिदानंद घन परमात्मा हैं और आपके सब जीवन से, इसलिए आप इनके द्वारा किए गए दुख को दुख नहीं मानते, अपमान नहीं मानते। तो श्रीपद सनातन ने श्रीपद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उपक्रम में कहते हैं कि गर्भा देवत त्वन मखम विखंड्य लोभा देव त्वन संप्रदानीय नैवेद्यम भोक्तुम। रविन्द्र ने ऐसा कहा कि आप किसी के दोष ग्रहण नहीं करते हैं, तो भगवान ने कहा, मान लीजिए इस तरह का, नहीं मुझमें भी गर्व था तभी ना आपका मख आपका यज्ञ रोक दिया, घमंड से मैं आपका यज्ञ रोक दिया, और लोभ भी था, लोभ से आपका नैवेद्य मैं खा गया गोवर्धन का बहाना करके, खाया तो मैं ही ना। तो गोवर्धन यज्ञ का बहाना करके आपका नैवेद्य मैं खा गया, आपके लिए जो पकवान बना था सब मैं खा गया, तो गर्व है ही, गर्व है तो आपका यज्ञ नहीं होने दिया, तो गर्व है मुझ में, और लोभ है आपका भोजन मैं खा गया। ये सब मैं किया हूं तो आप कैसे कह रहे हैं कि मुझ में लोभ नहीं है? तो कहते हैं तब इंद्र अपने में भगवान की वक्रोक्ति की संभावना करके कहते हैं, हे नाथ त्वन माया मोहितो अपि अहम्, मैं आपकी माया से मोहित हूं इतना सत्य है, लेकिन फिर भी आपकी कृपा के लेश से मैं आपको समझता हूं। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि हम में गर्व है, हम में लोभ है? मैं आपकी माया से मोहित हूं लेकिन आपकी कृपा के लेश से मैं आपके तत्व को जानता हूं, आप क्या हैं। तो आप विशुद्ध सत्व, विशुद्धव विशुद्धम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्कम धाम। संस्कृत में धाम का एक अर्थ होता है स्वरूप। तो भगवान इंद्र ये कह रहे हैं कि मैं आपके स्वरूप को जानता हूं, अपनी उसी बात को कहने के लिए कि आप कभी अवज्ञा नहीं मानते हैं, आपकी अवज्ञा हो भी नहीं सकती है, आप में क्रोध का अभाव है, लोभ का अभाव है, कोई दोष नहीं है, आप शुद्ध हैं। उसी को कह रहे हैं कि तव धाम आपका स्वरूप विशुद्धम प्रकृति से पार अप्राकृत चिदानंदमय है। आपका स्वरूप, आपका जो श्री विग्रह है, यह बिल्कुल शुद्ध है अर्थात अप्राकृत और चिन्मय है, शांतम और क्षोभ रहित है, शांत अनुग्रमिति जावत, उग्र नहीं है आपका स्वरूप। वास्तव में भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है, भगवान विष्णु का, बिल्कुल शांत, उग्र कौन होता है, किसमें उग्रता आती है, उग्र कौन होता है, दो कारण से, इच्छा से और इच्छा पर व्याघात से। कुछ चाहता है इधर से दौड़ धूप, ये करो ये करो वो करो, खूब आनंद से केवल बांसुरी बजाना ही कौन करता है। भगवान तो अनुग्रह है, सामरो घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। एक बार की बात है, सत्य है कि नहीं, भारतवर्ष में जब अंग्रेजों का शासन था तो उन लोगों ने सुना कि यहां बहुत भगवान हैं, लोग बहुत की पूजा करते हैं। कोई कहता है कि हमारा भगवान बड़ा है, हमारा भगवान बड़ा है, हमारा भगवान बड़ा है। तो अंग्रेजों में से कोई जो प्रधान था वो कहा कि अच्छा अपने अपने भगवान का फोटो लाइए तो हम विचार करेंगे। अंग्रेज लोग सभी विषयों में दखल देते थे, अपने अपने भगवान का फोटो या मूर्ति लाइए हमारे पास, हम देखेंगे विचार करेंगे कि कौन भगवान है। सब लोग ले गए, शिव जी को ले गए तो हाथ में त्रिशूल था, भगवान विष्णु के हाथ में चक्र था, भगवान श्री राम के हाथ में धनुष बाण था और काली जी तलवार चलाने के लिए उद्यत थे। तो विचार करने लगे, सबको देखा और भगवान कृष्ण को देखा तो कहा कि इन सबको भय है, ये हथियार लेकर के खड़े हैं, ये जो बांसुरी बजा रहा है वास्तव में यही ईश्वर है, इसको कोई भय नहीं, शांत आनंद से बांसुरी, यही भगवान है। या अखंडानंद सरस्वती कहते थे, वो प्रवचन करते समय वृंदावन में कह रहे थे इस बात, खूब हंस रहे थे। वास्तव में भगवान तो बांसुरी वाला है। बोल बंसी वारे की तो तव धाम शांतम, आपका स्वरूप बिल्कुल शांत है, अनुग्रह है, परिपूर्ण है, क्षोभ रहित है। यद्यपि भगवान में भी क्षोभ है, क्षोभ का मतलब केवल क्रोध ही नहीं होता है, ये भी रो रहे थे, उखल में बांध दिए गए थे, जो हो ही रहा था, लेकिन वो रोना सच्चिदानंद है। शांत का एक अर्थ हुआ कि जो अशांत नहीं है, दूसरे लोग में क्रोध देखा जाता है, भगवान विष्णु में कोई क्रोध नहीं है, भगवान राम भी परम शांत है, क्रोध नहीं, लेकिन शिव जी का कभी कभी बहुत क्रोध में फोटो बनाया जाता है, माता काली जी का भी जीव निकाला हुआ और तलवार लेकर मारते हुए है ना। तो भगवान का स्वरूप शांत अनुग्रह, न इनको कुछ चाहिए और न कुछ चाहिए, उसमें बाधा पड़े तो फिर भयानक लड़ाई चालू हो। इस संसार में कोई साधु ये कोई व्यक्ति कैसे उग्र होता है, कोई उसका कुछ छीन लिया है, उसकी इच्छा पर व्याघात हुआ है, कहीं मान लीजिए प्रसाद लेने के लिए आगे खड़ा है, उसको उठा गए पीछे चलो क्यों, मैं पहले से खड़ा हूं। ऐसे ऐसे होता रहता है, और उतना ही नहीं कि वाणी से कह दे तुमको पीछे रहूंगा, तुम हमको क्यों कह धकेला पीछे। उग्र अशांत स्वरूप, फिर बड़ा बड़ा आकर के बोलना और आंखें लाल कर लेना और शक्ति हो तो थप्पड़ भी चला दे, ये सब अशांत। तो धाम अशांत, भगवान तो बिल्कुल शांत। इंद्र इतना उत्पात की, इतना उत्पात की, वो चाहते तो चक्र चला करके खत्म नहीं कर देते उनको, लेकिन नहीं, सो करने दो, वो भी एक मिनट दो मिनट नहीं, एक आध घंटा नहीं, सात दिन सात रात बरसाते रहे और शांति से गोवर्धन धारण किए रहे। हरे कृष्णा 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 हरे
हरे राम हरे
राम, कुछ भी नहीं बोले तो भगवान अप्राकृत है। भगवान का जो रूप है वो शांत है और तपोमयम, तप ज्ञान को कहते हैं, उसी को चिन्मय कहते हैं। ज्ञानातिशय रूपम, ज्ञान स्वरूपम, उसमें जड़ कुछ भी नहीं है भगवान में। ध्वस्त रजस तमस्कम, ध्वस्ते अविद्यमाने रजस तमसी जस्मिन तत्। ध्वस्त का अर्थ यह नहीं है कि भगवान में रजोगुण और तमोगुण पहले था लेकिन अब ध्वस्त हो गया है, अविद्यमान इसका अर्थ है। भगवान के स्वरूप में रजोगुण और तमोगुण है ही नहीं, इसीलिए कहा जाता है विशुद्ध सत्व है। सत्व भी नहीं है, ये कहा जाए कि अच्छा रजोगुण नहीं है तमोगुण नहीं तो सत्वगुण है, नहीं, ये जो सत्गुण है सत्वगुण ये कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता है, रजस तमह से विद्ध रहता है। लेकिन विशुद्ध सत्व का मतलब होता है अप्राकृत सत्व, वह बहिरंगा प्रकृति का गुण नहीं है, वह भगवान की चित शक्ति का गुण है जिसमें भगवान प्रकट होते हैं। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, ध्वस्त रजस तमस्कम, आपके स्वरूप में रजोगुण नहीं है और तमोगुण नहीं है, विद्यमान नहीं है, कभी नहीं। अतएव ग्रहणानुबंध, अतएव ग्रहणेन अज्ञानेन अनुबद्धत इति तथा स मायामयः। इसलिए जब आपका स्वरूप बिल्कुल शांत है, तपोमय है, ज्ञानमय है, रजोगुण तमोगुण नहीं है, तो यह ग्रहणानुबंध जो मायामय गुण प्रवाह है आप में नहीं है। ग्रहणानुबंध का क्या अर्थ है? ग्रहण का अर्थ होता है अज्ञान। संस्कृत में कई शब्द ऐसे हैं जिनके कई अर्थ होते हैं। ग्रहण का अर्थ है अज्ञान, जो जीव को बांध ले उसके ज्ञान को ढक दे, उसको कहते हैं ग्रहण। का तोरा ग्रहण लाग गई एकदम, ऐसे लोग कहते हैं ना भोजपुरी में ऐसे बोलते हैं, कोई अगर ठिठक जाए कोई काम न करे तो कहते का तोरा ग्रहण लाग गई एकदम तो ग्रहण माने बंधन, अज्ञान। तो ग्रहणे न अज्ञाने न अनुबद्धता इति तथा स, तो आप में ये अज्ञान से बांधने वाला मायामय अस्मदादिशु दृश्यमान माया कार्य, हम लोगों में जो माया का कार्य देखा जाता है, मायिक वस्तुएं हैं, हम लोगों का देह, हम लोगों का सोचना, हम लोगों का अनुमान, देखना, खाना पीना, सब मायामय है। कि आपका स्वरूप ये सब नहीं है। अयम गुण संप्रवाह, ये मायामय जो गुण प्रवाह है ते तव न विद्यते नास्ति इत्यर्थ। तो भगवान माया से बिल्कुल परे हैं और ये माया शक्ति देवताओं तक को बांधे हुए है। आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, भगवान स्वयं कहते हैं सभी जीव माया से बंधे। अतः तो भगवान इंद्र क्षमा मांग रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि हम लोग तो माया में बंधे हैं, ये माया का ये मायामय जो गुण प्रवाह है वो आप में नहीं है। गुण प्रवाह प्राकृत सृष्टि आदि और इसके कारण फिर राग द्वेष लोभ मोह मद चिंता ग्लानी, किसी में दोष बुद्धि, किसी के प्रति द्वेष बुद्धि, ये सब है ही नहीं आप में, ये तो सब मायामय चीज। गुण संप्रवाह गुण ही संप्रोहिते इति तथा संसार इति अर्थ, भगवान माया से बिल्कुल परे, माया के बल के अधिपति हैं और माया समस्त जीवों की स्वामिनी है, सभी जीव माया के अधीन है। तो जब भगवान में गुण संप्रवाह नहीं है तब इंद्र कहते हैं कुतो न तद है तव ईश तत्कृतो लोभादयो ये बुधलिंग भावा तथापि दंडम भगवान विभर्ति धर्मस्य गुप्ते खलनी ग्रह। यदि भगवान पूछे कि ननु अहम एवं विधश्चेत, यदि मैं ऐसा हूं कि मुझमें गुण संप्रवाह नहीं है, माया का प्रवाह नहीं है, तो कथम रागा दय, जब माया नहीं तो राग कैसे हो सकता, किसी में आसक्ति कैसे होगी। हमारी तो आसक्ति है, अब देख ही रहे हैं कि इन लोगों को बचा रहा हूं, गौओं के प्रति या गोपों के प्रति, यहां के लोगों के प्रति मेरा राग है ना। और तो राग क्यों हम में है, राग आदि कथन तन्मूला दंडादि प्रवृत्ति रित्या, और हमने आपको दंड दिया, आपका यज्ञ होने नहीं दिया, तो दंड भी दे रहा हूं तो दंड कोई कैसे देगा। आखिर किसी के गलती को समझ रहा है, उसको मारना चाहता है, तिरस्कृत करना चाहता है, तो दंड की प्रवृत्ति मुझमें क्यों है, और राग देखा जा रहा है। तब इस पर इंद्र भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे निरुपाधिक सर्वेश्वर, हे भगवान, आप निरुपाधिक सबके ईश्वर हैं। ऐसा नहीं है कुछ के ईश्वर हैं, कुछ के नहीं हैं, और कुछ समय तक ईश्वर हैं, कुछ समय नहीं रहेंगे, कुछ स्थान के ईश्वर हैं और उसके बाद कुछ स्थान के नहीं हैं। तो आप ईश्वर हैं। देखिए संसार में और बहुत से ईश्वर हैं, ईश्वर लेकिन सब सोपाधिक ईश्वर है, सब उपाधि। ईश्वर का अर्थ होता है मालिक, कंट्रोलर, कई कई मालिक है ना दुनिया में, कोई किसी खास क्षेत्र का मालिक है। जैसे मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री है तो सोपाधिक है, सोपाधिक का अर्थ होता है खास क्षेत्र का मुख्यमंत्री है। ऐसा नहीं कि अमेरिका में भी जाकर के दखल देगा, वहां का भी मंत्री है, रशिया का भी मंत्री है, भारतवर्ष में भी अपने स्टेट के अलावा मुख्यमंत्री नहीं है, है ना। इसको सोपाधिक कहते हैं, क्षेत्र द्वारा है, कुछ लोगों का है, कुछ क्षेत्र का है, कुछ समय के लिए है, सब समय के लिए कोई मालिक नहीं, सब समय के लिए और सबका मालिक है, और सभी देश का मालिक कोई नहीं। प्रयोग करते हैं मालिक मालिक मालिक, प्रयोग शब्द करते हैं ना, वो हमारे मालिक हैं, मालिक हैं, लेकिन मालिक है, कुछ ही लोगों के हैं, कुछ ही टाइम के लिए हैं, और कुछ ही विषय में मालिक, सब विषय में कोई मालिक नहीं। लेकिन श्री कृष्ण सबके निरुपाधिक ईश्वर हैं, तो अतः वे माया के अधीश्वर हैं। तत्कृता, तो माया के द्वारा जो संसार प्रवाह होता है, माया देह देती है, तो शरीर ग्रहण से किए गए उत्पन्न तदहेतव पुनर अन्यस्य शरीर ग्रहण से हेतव इत्यादि। तो जीव शरीर ग्रहण करता है और शरीर से काम करता है, और उसके शरीर में माया के द्वारा कुछ दोष उत्पन्न किए जाते हैं, राग द्वेष आदि सब, और शरीर के कारण जो होते हैं एक काम, राग द्वेष ईर्ष्या आदि जो ये दोष हैं, तो ये दूसरे शरीर के ग्रहण में कारण बनते हैं। इस शरीर से ये सब होते हैं और दूसरे शरीर के कारण बनते हैं ग्रहण करने के, और ये अबुध लिंग भावा, अबुधा नाम देहात्म भ्रमवताम लिंग भावा चिन्ह भूत पदार्थ भूता लोभादि। ये जो लोभ आदि हैं, लोभ है, काम क्रोध, ये सब है मूर्खों के पहचान बताने वाले पदार्थ हैं। अबुध का है अर्थ है देह को मैं मानना, जो देह को मैं मानते हैं वही ये मानते हैं कि हमारा अपमान हुआ, हमको ये चाहिए, उनमें लोभ उत्पन्न होता है, उनमें द्वेष उत्पन्न होता है। तो लेकिन ते कुतः नु तव संति, लेकिन ये सब आप में कैसे हो सकते हैं? केवल जो माया के द्वारा दिए गए देह को धारण किया है उसी में सब लोभ काम क्रोध आदि होते हैं। आप कोई प्राकृत शरीर ग्रहण नहीं करते हैं, आप विशुद्ध सत्वमय हैं। अतः देहात्म भ्रम वालों के जो स्वभाव हो जाते हैं, चिन्ह होते हैं, उनमें लोभ आदि उत्पन्न होते हैं, वो सब आप में नहीं है। कुतोन पवा तव न संति व नित्यम जथा सौ यथार्थान भव स्वरूप से तव कथम रागादि संभावना। हे प्रभु, आप में रागादि संभव नहीं है, द्वेष संभव नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि तब जब मुझमें राग नहीं है, द्वेष नहीं है, तो फिर मैं दंड कैसे देता हूं? दंड तो देना होता है किसी के प्रतिद्वेष करके। तब कहते हैं तथापि राग आदि अभाव होने पर भी हे भगवान, हे छह ऐश्वर्य से पूर्ण धर्म की रक्षा के लिए, स्थापना के लिए और खलों पर का निग्रह दमन करने के लिए दंडम विभर्ति, आप दंड देते हैं, न कि राग द्वेष से दंड देते हैं। जैसे अपने बच्चे को माता पिता अगर दंड देते हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत भारी द्वेष से दंड देते हैं। राग से तो दंड देने का कोई प्रश्न ही नहीं है, द्वेष से कोई कोई दंड देता है, किसी को मारता है, पीटता है। लेकिन माता पिता, अपना स्नेही, अपना बंधु यदि किसी को दंड देता है तो उसमें कोई द्वेष कारण नहीं होता है, बल्कि उसके हित के लिए वो दंड देता है। तो आप में राग द्वेष नहीं है, लोभ नहीं है, अतः आप बिल्कुल शुद्ध हैं। आप शुद्ध हैं इसलिए सब नहीं है, फिर भी दंड देते हैं तो वो जिसको दंड देते हैं उसके हित के लिए, धर्म की स्थापना के लिए और खल को सुधारने के लिए दंड देते हैं, निग्रह करते हैं, द्वेष से नहीं। जब माया से, अज्ञान से उत्पन्न देह का संबंध ही नहीं है भगवान में, तो फिर उस संबंध से उत्पन्न होने वाले लोभ आदि की तो वार्ता ही क्या है, यह भाव है। एवं सद्गुण निधित्वात् दोषाणाम अभावात् त्वयि तावकेषु च लोभादयो न सन्ति इति कैमुत् न्यायेन आह कुतोन्नति। उस श्लोक का यह भाव है कि जब आप सद्गुण निधि हैं, सब प्रकार के दोषों का आप में अभाव है, आप में और आपके भक्तों में लोभ आदि नहीं होते हैं, इसको कैमुत्य न्याय से भी कह रहे हैं ऊपर वाले श्लोक में। और अब कहते हैं आपके दंड दिए जाने पर भी यदि भगवान कहें कि आप दंड की बात करते हैं, मैंने आपको दंड क्या दिया है? गोवर्धन धारण किया तो मैंने आपको दंड क्या दिया? ये अपना बचाव किया ना, सभी गोपों के साथ गुहार लेकर के आप पर टूट पड़े होते तब माना जाता कि आपको दंड दिया। हमने तो कोई दंड नहीं दिया, आप दंड की चर्चा कर रहे हैं। और आपको दंड देने की मुझमें शक्ति ही क्या है? मैं एक अहिर का लड़का हूं, गोपाल बाल हूं, आप महादेवता हैं, मेरी क्या शक्ति है और क्या कारण हो सकता है कि मैं दंड दूंगा? आप हमारा कुछ भी बिगाड़े नहीं, और क्या दंड दिया, कौन सा आपको दंड दिया और क्यों मैं दे सकता हूं, और देने भी चलूं तो मेरी क्या शक्ति है दंड देने की? तब इंद्र कहते हैं नहीं ऐसे बाहर से कोई कहे देखने में लगता है कि आपने दंड दिया, लेकिन वास्तव में आपने दंड नहीं दिया। और अगर दंड दे भी तो आप हमारे पिता हैं, आप हमारे गुरु हैं, आप यदि दंड भी देंगे तो उसमें हमारा हित ही होगा, अनुग्रह ही हुआ है। ऐसे दंड नहीं दिए भगवान, वास्तव में इंद्र को कोई दंड नहीं दिया। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरत्यय काल उपात दंड हिताय स्वेच्छा तनुभी समीहसे मानम विधुन्वन जगदीश मान। आप समस्त जीवों के जगत के पिता हैं और आप ही जन्म देने वाले हैं और आप ही हितोपदेष्टा हैं, आप ही अधीश नियंता है, परमेश्वर है। और दुरत्यय सबसे बढ़कर के हैं, आपको आपसे कोई बढ़कर नहीं हो सकता है, लौकिक नियंता नहीं है आप। काल या दुरत्यय काल, आप ही निरत से काल हैं और उचित काल पर आप दंड देते हैं, उपात दंड। सन्मार्ग में प्रवर्तित करने के लिए आप उपेक्षा नहीं करते हैं, आप काल हैं, दंड देते हैं। दंड न दे व्यक्ति तो इसका अर्थ है कि वो अपने अधीनस्थ की उपेक्षा कर रहा है। यदि कोई गलती किया पुत्र और उसको पिताजी अगर कुछ डांटे न मारे न तो और छोड़ दे कि छोड़े उसको कौन बोलेगा, तो इसका अर्थ है कि उपेक्षा कर रहा है। तो आप उपेक्षा भी नहीं करते क्योंकि आप जगत के पिता हैं, गुरु हैं, अधीश्वर हैं, दुरत्य काल हैं, तो उपेक्षा नहीं करते, आप दंड देते हैं। तो इसी से ऐसा नहीं मान लिया जाएगा कि आप में वैषम्य है क्योंकि आप सब जगत के पिता हैं, गुरु आदि हैं, तो संबंध के अनुसार ही आप हमेशा हित ही करते हैं। जैसे गुरु अपने शिष्य का हित करता है, पिता अपने पुत्र का हित करता है, तो इसी तरह से आप देखने में लगता है कि खल निग्रह आप दंड दे रहे हैं, लेकिन खल को सन्मार्ग पर लाने के लिए, ठीक करने के लिए आप दंड देते हैं। अतः त्वम जगदीश मानिना, अतः अपने को जगदीश्वर मानने वाले हम जैसे मूढ़ लोगों के मानम गर्वम विधुन्वन, हमारे मान को गर्व को नष्ट करते हुए हिताय हित के लिए स्वेच्छा तनुभी समय से अपनी इच्छा से लीलावतार ग्रहण करके हमारे जैसे लोगों को कभी कभी दंड देते हैं तो उनके हित के लिए ही दंड देते हैं, उनके प्रति द्वेष भाव से नहीं। हरीश्वरी जी इन श्लोकों पर बहुत लिखे हैं। पित्रावा गुरुणावा वा पित्रावा गुरुणावा कृतो अपमान सम्मान सत्वर्ग। यदि पिता के द्वारा और गुरु के द्वारा पुत्र का या शिष्य का अपमान हो रहा हो तो सैकड़ों मान से बढ़ करके हैं। पित्रा वा गुरुणा वा कृतो अपमान स मान सत्वर्ज, वो सैकड़ों मान से बढ़ करके हैं, सत्कार से बढ़ करके हैं। जस्मा परिणति सुख दो, क्योंकि वह अपमान या दंड परिणाम में सुख देता है। भवती इति अधुना तुम्हें द्वयम त्वमस। अगर केवल पिता अपने पुत्र को दंड दे, अपमानित करे, तो वह दूसरे के द्वारा मिलने वाले सैकड़ों मान से भी बढ़ करके होता है पिता का अपमान। और गुरु भी अपमान कर अपने शिष्य का तो दूसरे के द्वारा दिए गए सैकड़ों सत्कार से बढ़ करके एक एक दे। तो हमारे तो आप दोनों हैं, तुम तू मैं द्वयम। हरिश्वर जी कहते हैं, भगवान इंद्र कहते हैं कि आप तो हमारे दोनों हैं, पिता गुरुस्त्वम, पिता भी हैं गुरु भी हैं, तो हमारा कोई अपमान नहीं हुआ है। अगर लोक दृष्टि से कोई कहे कि नहीं इंद्र का अपमान हुआ, तो हमारा तो इसी में हित हुआ। मैं अपने को जगदीश्वर मान रहा था, जगत का कंट्रोलर मान रहा था, ये बहुत भारी अज्ञान है, अज्ञान बहुत ज्यादा दुख देता। अच्छा हुआ कि आपने हमारा अभिमान खत्म कर दिया, शुद्ध कर दिया। स्वीयावनार्थम दधता स्वहस्ते मया चलम अचलम स्वीयावनार्थम दधता स्वहस्ते मया चलम ते किमकारि शासनम मैवम वदेशा चतुजत खलानाम इहैव तेनुग्रहनिग्रह प्रसु। वो आगे के श्लोक में कह रहा है कि हे अच्युत हे श्री कृष्ण आप ये मत कहिए कि आप ये कहेंगे कि मैं तो अपने लोगों की रक्षा के लिए अचल धारण किया गोवर्धन धारण किया मैं तुमको तो कोई दंड नहीं दिया हूं ऐसा मत कहिए। आपकी चेष्टा ही ऐसी है कोई भी लीला जिसमें आप खलों का सुधार करते ही हैं। आपकी चेष्टा जो है स्वाभाविक वो अपने आप खलों का सुधार हो जाता है। जैसे आपने हमको वास्तव में कोई दंड नहीं दिया आप तो अपने परिवार के लोगों को बचा रहे थे गौओं को सबको बचा रहे थे गोवर्धन धारण करके लेकिन इसी से हमारा हित हो गया। हमारा हित हुआ कि मेरा मद टूट गया जो बुखार चढ़ा था घमंड का वो उतार दिया आपने। बुखार उतार देना चाहे जैसे भी कोई उतारे अच्छा है ना। कोई जरूरी नहीं कि बुखार उतारा जाएगा बहुत कड़ी दवा लेंगे सुई लेंगे तभी। तो सुई देना देने से दवा उतर जाए तो कोई बात नहीं और सचमुच केवल किसी के देख देने से उतर जाए तो और ज्यादा दया है ना। भगवान इंद्र का मद उतारे के लिए उन्होंने कुछ डांटा डपटा नहीं न कड़ा दवा दिया अपना गुजारा किए अपना रक्षा कर रहे बरसा रहे ठीक है करो। अरे दूसरा व्यक्ति होता तो इंद्र को उसी समय पीटता है, है? है नहीं तो भगवान है वास्तव में क्षमा समुद्र को वर्षा कर रहा है वज्रपात कर रहा है और इधर अपना छाता तान करके गुजारा कर पीट रहा है ओला बरसा रहा है वज्रपात कर रहा है। वो 7 दिन तक चुपचाप धारण करना कुछ बोलना नहीं। वास्तव में अगर आदमी में ऐसी शक्ति आ जाए तो गोवर्धन को एक तरफ रख करके और उस पहले उसको मारेगा अगर इतनी शक्ति आ जाए चाहे गोवर्धन पर्वत को ही फेंक देगा वहां जाकर ऐरावत को मारे चाहे किसी को मारे कौन इतना बर्दाश्त कर सकता है कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता। एक बार नागपुर की बात मैं कह रहा हूं नागपुर स्कैन सेंटर में कोई लड़का कहीं से आसपास से बार बार फोन कर रहा था वो होम फोन था तो इधर से एक भक्त उठा रहा था मैं बैठा था ऑफिस में कौन फोन कर रहा है डिस्टर्ब कर रहा है तुम इधर फोन मत करो। लेकिन वो 2-2 मिनट पर फिर क्रेम क्रेम घंटी आ रहा और वो घंटी को इधर उधर नहीं रख रहा था कि फोन नहीं आ पाएगा वही रखता था तो रखता था क्या काम है क्या काम है। अंत में 5-6 बार जब वो किया तो फोन पटक करके और चला उसको मारने के लिए बगल में ही रहता था लड़का तो जो गया तो लड़का किवाड़ बंद करके रह गया। इसके बाद किवाड़ पर धा पिट रहा है इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता और वज्रपात कोई करने लगे तो कहां से सहेगा। नामदेव जी संत हो गए हैं महाराष्ट्र में जब महाराष्ट्र में पहुंचे तो उधर से ही चालू कर रहे हैं। नामदेव जी संत थे नामदेव जी थे एक नाथ जी वो जो मुसलमान थूक रहा था उन पर एक नाथ जी तो वो गोदावरी में स्नान कर करने जा रहे थे तो एक मुसलमान ऐसे छत पर रह रहा था रास्ते में था वो छत जब नहा करके आ रहे थे तो उनके ऊपर लोटा से पानी लिया और कुल्ला कर दिया। इनके लिए कोई नई बात नहीं है, यही स्वभाव होता ही है। तो मुसलमान कुल्ला कर दिया, कुल्ला कर दिया तो अब बेचारे फिर गए गोदावरी में स्नान किए। स्नान करके जब आते थे तब कुल्ला कर देते थे, तो वे जाते थे स्नान करते थे, फिर स्नान करके आते थे, गीले कपड़े नहीं बदल करके आते। ऐसे वो 10-12 बार किया, जब आते थे कुल्ला कर देता था, वो फिर स्नान करने आते। अंत में वो हार गया, अब कुल्ला करने के लिए दिन भर क्या बैठे। और वो तो जाते थे स्नान करके आ जाते थे, अंत में गिर गया चरण में, क्षमा मांगने लगा। तो वे क्या कहते हैं, तुम धन्य हो, तुम्हारे चलते गोदावरी जी में मुझे इतना स्नान मिला है, नहीं तो मैं ये कहीं बार नहाकर चला जाता था, एक बार सवेरे नहाकर चला जाता था, आज तुम्हारे कारण मुझे इस तरह तीर्थ में स्नान का मौका मिला, धन्य हो तुम। वो हार गया मुसलमान, लेकिन एकनाथ जी उसको कुछ नहीं बोले, वो नहाने जा रहे थे, नहाने जा रहे। वास्तव में संत इसी को कहते हैं और दुष्ट उसी को कहते हैं। खोल ले। हार गया। एक संत एक नदी में स्नान कर रहे थे, ये सब सत्य घटनाएं हैं। नदी में स्नान कर रहे थे तब तक एक बिच्छू बह कर जा रहा था नदी में, तो कृपा देखे उसको निकालना चाहे तो कोई लकड़ी नहीं था, कुछ नहीं था, तो अपने हाथ पर छान करके और उसको रखने जा रहे थे। तब तक तो हाथ में वो मारा डंक और हाथ कांप गया, फिर गिर गया, फिर गिर गया, तो फिर उसको उठाया। जब उठाते थे तो डंक मारता था, वो बीस चढ़ रहा था, हाथ कांप जाता था और गिर जाता था। कई बार मारा, कई बार उठाए, लेकिन अंत में किसी ने कहा कि अरे इसका स्वभाव ही है, ये डंक मारेगा ही, आप क्यों उठा रहे हैं, बहाने दीजिए, क्या जरूरत है। तो क्योंकि इसका स्वभाव है डंक मारना, लेकिन मेरा स्वभाव है इसको बचाना, मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। अंत में उसको ले ही गए, बाहर रख दिए। अब इसके बाद जो दवा हुई सो हुई। तो जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ा तो संत कैसे अपना स्वभाव छोड़ दे। ऐसे ऐसे महान पुरुष हुए हैं। तो ये संत में ये गुण आ जाता है, तो संत तो भगवान का किंकर दास होता है। जब दास में ये गुण आ गया तो भगवान के गुण का तो कहना ही नहीं, वो तो अनंत गुण निधि है। क्षमा करना, द्वेष नहीं करना, द्रोह नहीं करना, उसके तो समुद्र है, तो सोचे भी नहीं कि इंद्र हमारा अपराध किया। फिर भगवान ऐसी लीला करते हैं कि इससे अपने आप गर्व दूर हो जाता है। ऋण मोह काम लोभा, मतलब क्रोध मोह काम लोभ शिवर भृषम अश्मासु दुर्गुण वृतासु। हम लोग प्रकृति के गुणों के भीतर हैं, इसलिए हम लोगों में काम क्रोध लोभ आदि आ सकता है, लेकिन त्यज रुसमिति बागे सभगवंस्तई में अन्य जन कृताभ्यास। लेकिन हे भगवान, अगर आपसे कोई कहे कि आप अपना क्रोध छोड़ दीजिए, हमको क्षमा कर दीजिए, इसको भी क्षमा कीजिएगा, ऐसा हम लोग इसलिए कह देते हैं कि हम में यही अभ्यास है, यही अभ्यास, क्रोध करते रहते हैं। तो कोई कहे क्रोध छोड़ दीजिए, या दूसरों को कहते हैं क्रोध छोड़ दीजिए, आप में तो क्रोध है ही नहीं, छोड़ने को क्या कहा जाए, क्षमा क्या मांगा जाए। जब आप अपराध सोचे हुए तब ना क्षमा मांगा जाता है, आपने कोई क्रोध किया ही नहीं, आपने द्रोह रोष कुछ है ही नहीं, तो यह कहूं मैं कि मुझको क्षमा कर दीजिए, तो यह भी कहना उचित नहीं है, है ना। अगर क्षमा, अगर अपराध की किसी को याद हो तब तो उससे कहा जाए कि क्षमा कर दीजिए। भगवान तो वैसे ही गोवर्धन धारण किए, अपने भक्तों की, अपने परिवार की रक्षा किए, और इसके बाद दूसरे दिन वैसे ही गाय चराने थे। किसी से कहे नहीं कि इंद्र बदमाशी किया, भगवान एक शब्द नहीं बोले। वो लोग कह दिए कि अरे इंद्र बरसा रहा है, जग रुकने से रुष्ट हो गया, लेकिन भगवान कुछ नहीं कहे, भगवान कुछ नहीं कहे। गोवर्धन उठाए, फिर रख करके गोवर्धन को अपने काम में लग गए, उसका जो काम है वो करे, हमारा जो काम है। दूसरा व्यक्ति रहता तो अब गाय बांध करके क्या क्या सोचता, पहले गाली देता, एक दो घंटा लेक्चर देता इंद्र के दोष के विषय में, इसे वैसे ये भी कहता कि पूजा कर रहे थे ना तुम लोग, हर एक साल खाया, एक साल नहीं खिलाया गया, तो यही किया ना, यही बेवकूफी करो तुम लोग। इस तरह बड़बड़ा करके तो आदमी का बोलना बिल्कुल स्वभाव होता है, देख लिया ना देवता। अंत में गोवर्धन जी काम आए, वो तो महाशत्रु हो गया, लेकिन भगवान इस तरह क्षमा कर रहे हैं। इंद्र माफी मांग रहे हैं, पिता गुरुस्तम जगता मधीशो दुरत्य काल उपात दंड हिताय स्वेच्छा तनभी समीह से मानम विधुन्वन जगदीश मानिना। अपने को जगदीश्वर मानने वाले या स्वामी मानने वाले के अभिमान को दूर करने के लिए आप कभी कभी नहीं, स्वेच्छा से तो शरीर ग्रहण करके स्वरूप प्रकट करके आप जो करते हैं तो उससे अपने आप लोगों का सुधार हो जाता है, खलों का सुधार हो जाता है। तो हे भगवान, आपने मेरा हित किया है, कल्याण किया है, और मैं किस मुख से कहूं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, आप तो अब हमारा अपराध लिए ही नहीं, आप तो ऑलरेडी क्षमा किए हैं, इसलिए मैं अब क्या कहूं। सत्वम ममेश्वर जमद प्लुतस्य, ये मद विधाज्ञा है ना, ये मद विधाज्ञा जगदीश मानिनः त्वां वीक्ष काले भयमा शुद्धं मदम हित्वार्ज मार्गम प्रभजन्त पस्मया इहा खलानाम अपिते अनुशासनम कथम एतद इति अत आह यति दंडस्य हितार्थत्वमेव उपपादयति यति। भगवान जो दंड देते हैं वह सबके हित के लिए, खलों के हित के लिए दंड देते हैं, इसी को कह रहे हैं। जगदीश मानिना, ये मद विधाज्ञा, अपने को जगदीश्वर मानने वाले, जगत का स्वामी मानने वाले हमारे जैसे जो अज्ञ हैं, मूर्ख हैं, मद विधाज्ञा के मेरे जैसे हैं और अज्ञ हैं, दोनों हैं। मद मादृशाश्च अज्ञाश्च ते अज्ञाश्च काले उचित काले भयम, समय समय पर जब आप इसी लीला करते हैं तो उचित काल में भयम त्वाम, त्वाम का विशेषण है भयम, भयंकर दंडधर आपको देख करके तन मदम, हमें जगत के स्वामी हैं या नियंता हैं, शीघ्र ही इसको त्याग करके तन मदम त्यज्य, आप भयंकर हैं दंड देते हैं तो आप पर विचार करके आपकी बात सोच करके आपको देख करके वे इस मद को छोड़ देते हैं जल्दी, आशु त्यक्त्वा अपस्मया, उनका गर्व नष्ट हो जाता है और तब आर्ज मार्गम प्रभजन्ति, तब आपके भक्ति लक्षण मार्ग पर चलते हैं या सज्जनों के मार्ग को अपनाते हैं। अतः तव इहा अपि खलानाम अनुशासनम, आपकी कोई भी चेष्टा खलों की शिक्षा के लिए होती है। आप जो दंड देते हैं वास्तव में दंड नहीं देते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, उनका सुधार करते हैं। स त्वं ममेश्वर जमद प्लुतस्य कृता गशस्ते विदुषः प्रभावम क्षन्तुं प्रभुर्थार हसि मूढ़ चेतसो मैवम पुनर्भूर्मतिरीश इमे सती। हे प्रभो, हे मदादि सर्व देवेश्वर, आप हमारे ईश्वर हैं, ब्रह्मा जी के ईश्वर हैं, भगवान शिव के भी ईश्वर हैं, समस्त देवताओं के जीवों के आप महामहेश्वर हैं, सर्वेश्वरेश्वर हैं। अतः हे क्षमा समर्थ, हे प्रभु, क्षमा देने में आप समर्थ हैं, अतः हमें नहीं कहना चाहिए आप क्षमा, आप अपराध नहीं ग्रहण किए हैं, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि हमको क्षमा कर दीजिए। हे क्षमा समर्थ, क्षमा करने में भी समर्थ चाहिए। किसी किसी के अपराध को आदमी सोचता रहता है, उसने ये किया है, और कोई साथी मिलने पर उसके वर्णन भी करने लगता है, वर्णन भी करता है, वैसा किया, वैसा है, ये है, वो है। इसका तो क्षमा करने में समर्थ नहीं है। इसमें प्रभु, प्रभु कहा जा रहा है कृष्ण को, इंद्र कह रहे हैं कि आप क्षमा समर्थ हैं, आप क्षमा करने योग्य हैं। अतः सत्वम जगत हितकारी, आप जगत के हितकारी हैं। कृतागसह, मैं कृतम आगह, मैं आपका अपराध किया हूं, तो ऐसे अपराधी के ते तव प्रभाव महात्म्यम, अभी समय आपका प्रभाव नहीं जानता था, मैं आपको गाली दिया, मैं आपके भक्तों पर पानी बरसाया, वज्रपात किया, आंधी चलाया, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था कि आप ईश्वर हैं, मैं भूल गया था। प्रभावम अविदुष अजानत, कैसे नहीं जानते थे, तो कहते हैं कि मूढ़ चेतस, मैं विचारहीन था, कुछ विचार नहीं किया, ये कैसे हो गया, विचार तुम्हारा कैसे चला गया, विवेक कैसे चला गया। तो कहते हैं ऐश्वर्य मद अप्लुतस्य, ये इंद्र पद जो है इतना धनी है, उस पद पर होने से मेरी बुद्धि चौपट हो गई। तो भगवान से इंद्र ऐसे बोल रहे हैं, इतना बड़ा पद है, उस पद पर रहते रहते हमें बुद्धि खत्म हो गई, और बुद्धि खत्म हो गई तो मैं आपके प्रभाव पर नहीं जाना, और नहीं जाना इसीलिए सब वर्षा किया, ये कि आपके विषय में दुरुक्ति भी बोला, खराब वचन बोला, और मैं देवता होकर के भी, इंद्र होकर के भी मैं इतना गलत काम किया। कुछ भी हो, मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपका दास हूं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, बोल रहे हैं। आपका तो अवतार भी दयामय होता है, फिर आपका तो कहना ही कि आप तो अवतारी तवावतारो या अयम अधोक्षजे भूवो भराणाम उर्भार जन्मनाम चमु पतिनाम अभवाय देव भवाय जुष्म चरणानुवर्तिनाम। हे अधोक्ष, आप तो इंद्रियों से परे हैं, इंद्रियों के अनुभव से परे हैं, अतः तो मैंने जो भी गाली दिया वो आप लिए नहीं होंगे, आप तक तो पहुंच ही नहीं सकता है। हे देव, हे सबके पूज्य, मैं आपके भक्तों से पूजा ले रहा था, और पूजा रोक दिए जाने पर मैं इतना खौफ हो गया, मैं नहीं जानता था, नहीं पहचाना, आप ही वास्तव में पूज्य हैं, आपके लिए यज्ञ करना चाहिए, आपकी वंदना करनी चाहिए, आप स्वयं पृथ्वी का भार दूर करने के लिए इस जगत में अवतार लिए हैं, जो इस पृथ्वी के भार स्वरूप हैं, उन पापियों को चमुपति नाम सेनापतियों का नाश करने के लिए, सैनिकों का नाश करने के लिए, इन महाभारत युद्ध के लिए कह रहे हैं कि आगे भगवान बड़े बड़े सेना का नाश करेंगे, जैसे जरासंध की सेना का, कंस की सेना का, और भी राजाओं की सेना का नाश करेंगे। तो इन पृथ्वी के भारभूत राजाओं का वध करने के लिए आप अवतार लिए हैं, उनको मुक्ति देने के लिए, और आपके चरणों की सेवा में जो रहते हैं, आपके जो भक्त हैं, उनके भवाय मंगलाय, उनके मंगल के लिए, उत्तरोत्तर उनके भक्ति वृद्धि के लिए आप अवतार लेते हैं। यह पृथ्वी तले तव अवतार भवती इति शेष, इस पृथ्वी पर भगवान का अवतार होता है, वो पृथ्वी पर भार बने हुए मनुष्यों का, राजाओं का वध करने के लिए होता है। क्योंकि वास्तव में राजा लोग ठीक हो जाएंगे, सरकारी आदमी ठीक हो जाएंगे तो जनता अपने आप ठीक हो जाएगी। इसीलिए भगवान जब अवतार लेते हैं खोज खोज करके बदमाश राजाओं का वध करते हैं। दंड मिलना चाहिए तो कुशासकों को, शासन ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो भगवान यहां आते हैं तो अब ये नहीं है कि वो भी एक वोट डाल देंगे, देखते हैं कौन गलती कर रहा है। अक्षौणी के अक्षौणी सेनाओं का नाश करते हैं। मथुरा जब पहुंचे तो पहले साल में ही जरासंध की 23 अक्षौणी सेना का संहार किए, और प्रत्येक साल वो 23 अक्षौणी सेना लाता था, गिन करके न कम न बेसी, और 18 साल लाता रहा लगातार। तो 17 साल तो भगवान उसकी सेना का संहार किए, 18वें साल भी संहार किए, लेकिन जरासंध के भय से भाग चले, दिखावटी भय से सेना का वध कर चुके थे। तो दोनों भाई श्री बलराम जी और श्री कृष्ण भाग चले थे, इन लीला थे उनकी। तो चमूपति नाम सेना नायकों का आप वध करेंगे जो पृथ्वी के भार बने हुए हैं, तो आप हमें क्षमा कर दीजिए। आप सब तरह से महान हैं, प्रभु हैं, ईश्वर हैं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। आप छह ऐश्वर्य से पूर्ण भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। आप परम पुरुष हैं, आपको मैं नमस्कार कर रहा हूं। आप महात्मा हैं, आपको नमस्कार कर रहा हूं। आप वसुदेव जी के पुत्र हैं, आपको नमस्कार कर रहा हूं। और हे सात्वतपति, हे जादवों में सबसे श्रेष्ठ, आपको मैं नमस्कार कर रहा हूं। क्षमा पय नमस्करोति, क्षमा कराने के लिए इंद्र क्षमा कराते हुए बारंबार भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, गुण गा करके। भगवते साक्षात परमेश्वराय नमः, आप साक्षात परम ईश्वर हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। तत्रापि कृष्णाय, आप अपने अशेष ऐश्वर्य को प्रकट किए हैं और इसके द्वारा सर्व चित्ताकर्षकाय, आप सबके चित्त के लिए, मन के लिए परम सुंदर है, आकर्षक हैं, सबके मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो कृष्णाय तुभ्यम नमः। पुरुषाय, आप पुरुष हैं, पुरी में शयन करते हैं, सबके हृदय के अंतर्जामी हैं, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूं। महात्मने और अंतस्थत्रे अपि अनिर्विकार आया, आप सबके हृदय में हैं, फिर भी आप महायात्मा हैं, मतलब निर्विकार हैं। भगवान सबके हृदय में हैं तो इसका अर्थ नहीं कि वहीं पर बस बंद हैं, छटपटा रहे हैं। सबके हृदय में होते हुए भी निर्विकार हैं। जीव है, संसार के पदार्थों को भोगता है, सुख दुख आदि से प्रभावित होता है, लेकिन भगवान हृदय में रहते हुए भी निर्विकार है। हृदय में है पर जीव लोभित होता है, जीव लुब्ध हो जाता है किसी वस्तु को देख करके, मुझे खाने को मिले, ये मिले, वो मिले, किसी के अपमान से क्षुब्ध हो जाता है, लेकिन भगवान हृदय में होते हुए भी निर्विकार है, कोई विकार नहीं। ऐसा कहा गया है कि जीव और ईश्वर दो पक्षी की तरह हैं जो देह रूपी वृक्ष पर बैठे हैं, ये वृक्ष रूपी देह पर बैठे हैं, और एक वृक्ष के फल को खाता है, खट्टा लगता है तो क्या करता है, मीठा लगता है तो वाह वाह करता है। तो जीव है इस प्रकृति के सुख दुख को भोगता है तो उसके अनुसार कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी कुछ, लेकिन परमात्मा ज्यों का त्यों साक्षी है, देखता रहता है, केवल देखता रहता है। तो इसीलिए उनको महात्मा कहते हैं, भगवान महान है, सभी जीवों के हृदय में है, और सभी जीव कुछ न कुछ सुख दुख आदि से प्रभावित होते रहते हैं, लेकिन भगवान निर्विकार है सबके हृदय में। रहते हैं। कुतः वासुदेवाय, क्योंकि वे सर्व निवासाय है। वासुदेव कहते हैं जो सबके हृदय में निवास करते हैं। सत्वताम पते, जादवा नाम पते, आप जादवों के रक्षक हैं, पति हैं, मैं आपको नमः प्रणाम कर रहा हूं। स्वच्छंदोपात देहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्तये सर्वस्मै सर्व बीजाय सर्वभूतात्मने नमः। भगवान श्री कृष्ण के कई विशेषता गुण को बता करके नमस्कार कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि सात्वताम पते नमः, जादवों के पालक जादवपति आपको हम नमस्कार करते हैं, तो भगवान कहते हैं तरहि किम अहम जादव, तो आप मुझको जादव एक मनुष्य समझते हैं क्या? तब कह नहीं नहीं नहीं, स्वच्छंदो पात देहाय, स्वेशाम भक्ता नाम छंदे न इच्छया स्वीकृत देहाय, आप अपने भक्तों की इच्छा से अपना स्वरूप प्रकट की करते हैं। कभी राघव बनते हैं, कभी जादव बनते हैं, कभी कुछ। तो रघुवंश में जन्म लिए तो उनको सब लोग राघव राघव कहते हैं भगवान, और जदुवंश में जन्म लिए तो जादव जादव। तो भक्तों की इच्छा से आप जदुवंश में प्रकट हुए। किंवा स्वयं भक्त ही कर्म कर्त भी छंदे न इच्छा करण रूपया उपसमीपे आता आकृष्टा देहा श्रीमत्स्य कुर्मा दयोपी विग्रह जन तस्मय। यह भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपने शरीर को प्रकट करते हैं, कभी मत्स्य रूप, कभी कुर्म रूप, कभी कोई रूप। स्वच्छंदो उपाध्य है, तो भक्तों की इच्छा से, प्रतिस्व इच्छा से, दास्य से, वात्सल्य से रमण करने के लिए, उनको सुख देने के लिए उप आता अपना शरीर निकट लाते, अपना स्वरूप निकट लाते। विशुद्ध ज्ञान मूर्तये, आपका श्री विग्रह, आपका स्वरूप विशुद्ध है, मायातीत है, पूर्ण नक्श सिक्त ज्ञानमय है। ज्ञानम एवं मूर्ति जस तस्मय, इस संसार में किसी का शरीर बना है तो उसमें क्या चीज है, क्या लगा हुआ है उपकरण, ये विचार करके, और तब भगवान के शरीर में क्या है विचार करने से। भगवान के शरीर में केवल ज्ञान है, मतलब चेतना, नक्श सिक्त केवल चेतना है, चेतना है। और हम लोगों के शरीर में केवल जड़ मैटर है, चेतना है ही नहीं। चेतन थोड़ा हल्का जीव है, वो पता नहीं कहां रहता है, और सब जड़ है। और भगवान के लिए यहां कहा जा रहा है, इंद्रदेव कह रहे हैं कि ज्ञान मूर्तय, विशुद्ध ज्ञान मूर्तय, विशुद्ध ज्ञान ही, चिन्मय चिन्मयता ही, चेतना ही जिनकी मूर्ति है। भगवान का शरीर पूर्ण चेतन नक्ष सिक्त सर्वस्मय, पर ऐसा होते हुए भी आप सर्वस्मय, आप माया जगत रूपाय, आप अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा जगत के रूप में भी हैं, अपनी भिन्न प्रकृति के द्वारा। यह कैसे? क्योंकि सर्व बीज आया, सर्वस्व बीज आया, कारणाय महापुरुष रूपाय, आप सबके बीज हैं, सबके कारण हैं, सबको उत्पन्न करने वाले हैं। अतएव सर्वभूतात्मने, सर्वभूतानाम आत्मने अंतर्जामिले, आप सब जगत के रचयिता हैं और सबके भीतर निवास करते हैं, अंतर्जामी हैं, अंतः में रह करके उनको प्रेरित करते हैं। अतः नमः अस्तु, आपको प्रणाम है, बार 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 देवराज इंद्र प्रणाम कर रहे हैं भगवान। मैदम भगवान गोष्ठ न साया सार वायु भी, एक बात को इंद्र नहीं भूल रहे हैं, वास्तव हे प्रभु मुझे महा अपराधी पर आपने ये परम अनुग्रह किया, यही आपकी सबसे बड़ी विशेषता है। हे भगवान मया इदम चेष्टितम, मैंने जो अभी अभी चेष्टा किया, गोष्ठ नाशाय आसार वायु भी, ब्रज का नाश करने के लिए, गौओं का, गोपों का, पशु पक्षियों का, सबका विनाश करने के लिए मैंने जो आसार वायु भी धारा बरसाया, मुसलधार वर्षा किया और हवा तीव्र गति से बहाया, ये जो चेष्टा किया मैंने, विहते यज्ञ, जब हमारा यज्ञ नष्ट हो गया, हमारी पूजा नहीं की गई, इस पर मुझे बहुत ज्यादा क्रोध है आया, तीव्र मन्यना। प्रभु मैं क्या बताऊं, समय इतना क्रोध हुआ कि मैं कुछ देख ही नहीं रहा था, बस आपको नहीं समझा। तो मेरा यज्ञ नष्ट हो गया तो आप, मैं इतनी वर्षा किया, उस बात को कहने में भी शर्म आ रही है, क्या करूं, इसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरा यज्ञ बंद हुआ तो मैं होश में नहीं रह गया, विवेक नष्ट हो गया हमारा, तीव्र क्रोध उत्पन्न। तो ये मैं ये किया हूं और आपने उल्टा अनुग्रह किया, तो ऐसा अनुग्रहित अस्मि ध्वस्त स्तंभो वृथोद्यमा ईश्वरम गुरुमात्मानम त्वामहम सर्वम गतम। मैं आपके द्वारा अनुग्रहित हुआ हूं, आपने केवल कृपा ही किया है, आज मेरा स्तंभ घमंड टूट गया, बिल्कुल अभिमान नहीं है। वृथा उद्यमा, मैं तो अपनी ओर से बाज नहीं आया, ब्रज का नाश करने के लिए मैं 7 दिन 7 रात वर्षा करता ही रहा, जो शक्ति थी लगा दिया, अपनी ओर से मैं पूरी शक्ति लगा दिया नाश करने के लिए, लेकिन हमारी शक्ति लगी नहीं और आज ध्वस्त स्तंभ, मेरा घमंड चूर्ण हो गया है। ये बहुत अच्छा किया आपने, हम पर अनुग्रह किया, आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे हितोपदेष्टा हैं, आप हमारे आत्मा हैं, हमारे हृदय के स्वामी, त्वाम हम शरणम गतः, मैं आपके शरण में हूं, त्राही नाथ मैं आपके शरण में हूं। यह कह करके इंद्र बारंबार भगवान को प्रणाम कर रहे थे, मैं बहुत गलती किया हूं, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। इस तरह जब इंद्र ने भगवान से क्षमा प्रार्थना किया, तब श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, एवं संकीर्तितः कृष्णो मघोना भगवानमुं मेघ गंभीरया वाचा प्रसन्निदम ब्रवेत। इस प्रकार जब इंद्र ने प्रार्थना किया भगवान से, तो भगवान ने हंसने लगे, हंसते हुए ये बात कहे। भगवान को किसी बात का दुख नहीं था, इतना वर्षा किया, इतना ये किया, ये किया, कोई दुख नहीं, वो तो सुख की मूर्ति है, आनंद की मूर्ति है भगवान। मेघ गंभीर वचन बोले, मेघ गंभीर का अर्थ यह नहीं है कि मेघ जैसे गरजता है सबको सुनाई पड़ता है, ऐसे भगवान की बात सबको सुनाई पड़ी, नहीं, बहुत प्रसन्न मुद्रा में, भगवान का कंठ बहुत अच्छा है और उससे बोले, इदम अब्रवीत, भगवान प्रहसन हंसते हुए ये बात बोले, ये बहुत रंज होकर के नहीं बोले। ध्यान देना चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी भगवान के मूड का वर्णन कर रहे हैं, प्रहसन हंसते हुए, मेघ गर्जनवत गंभीर स्वरेण, लेकिन आवाज केवल इंद्र को ही सुनाई पड़ रही थी, सबको नहीं। तो भगवान बोले, श्री भगवान वाच, ये कौन बोल रहा है, श्री भगवान सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। श्री भगवान वाच सुंदर भगवान बोले, अभी अभी जो गिरिराज धारण किए थे वे भगवान बोले। मया ते कारी मघवन मखभंगो अनुगृहणता मदनुस्मृतये नित्यं मत्तस्येन्द्र श्रियाभृशम्। 7 वर्ष के लड़के के पास इंद्र गिड़गिड़ा करके क्षमा मांग रहे हैं। ये कमजोर कवि हमारे गांव में आए थे, रामवचन यादव, तो कविता बनाए थे, इस लीला पर भी कविता बनाए थे भोजपुरी में। तो याद हमें एक लाइन की, इंद्र आई नहीं, इंद्र गोड़े गिरा और राई हो जदुराई, कुछ ऐसे लिखे थे प्रार्थना। अररा करके गिरना इसको कैसे कहेंगे, तो अररा करके गिरना इसको क्या कहा जाए। हाँ वो तो है सब, लेकिन भोजपुरी अररा करके गिरना मतलब जैसे अरार गिरे तो वैसे गिरे चरण में इंद्र, गोड़े गिरा अररायी हो गोड़ पर चरण पर गिरे। इतना बड़ा देवता 7 वर्ष के लड़के के पास गिड़गिड़ा करके रो रहा है, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपराधी हूं, आपको प्रणाम, अब जगत के ईश्वर है ईश्वर। लेकिन कृष्ण को न तो इंद्र के प्रति कोई रोष था और न इंद्र की स्तुति से कोई गर्व हुआ कि मैं कितना बड़ा हूं, आज इंद्र हमारे चरण पर गिर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बिल्कुल उसी मुद्रा में थे, आनंद में और हंसते हुए बोले, लेकिन बोलने में सावधान कर रहे इंद्र को, हे मघवन, मघवा कहते हैं, मघवान इंद्र को कहते हैं, जो वर्षा के अधिपति हैं। भगवान ने यही संबोधन किया पहले, हे वर्षा मंत्री जो भी वर्षा जहां भी होती है उसके इंचार्ज इंद्र हैं, तो हे बाढ़ मंत्री हे मघवन अर्थात हे इंद्र, इंद्र श्रिया इंद्र पद के आधिपत्य से, अथवा इंद्र संबोधन और श्रिया ये मानना चाहिए, अथवा इंद्र श्रिया, इंद्र को जो धन वैभव पद मिला हुआ है उस धन से पद से अधिकार से भृशम मत्तस्य, आप बहुत मत्त हो गए थे, एकदम बेहोश। भृशम मत्त का अर्थ है कि एकदम होश में नहीं थे कि मैं देवता हूं और मुझे गायों का वध नहीं करना चाहिए, आप अपने को बहुत बड़ा मान रहे थे, एकदम भूल चुके थे अपने। ते तव नित्यम मदनुस्मृत, आप सदा हमारा स्मरण कर सके, मेरी याद आपको रहे, कोई और ईश्वर है इस संसार का और आपको इस पद पर कोई और रखा है, इसकी स्मृति के लिए आप पर अनुग्रह करके आप मेरा स्मरण करें, इसके लिए मैं आपका यज्ञ बंद कराया था। कितनी भगवान की दया है इंद्र पर, आप मेरा स्मरण कर सकें कि हमारे स्वामी कृष्ण हैं प्रभु हैं, इसके लिए मैं आपका यज्ञ बंद किया है। इंद्र ऐसा नहीं कह सकते थे कि प्रभु पे फोन कर दिए होते हमको लेकिन ये फोन से सुनने वाले नहीं थे इंद्र। भगवान कहते हैं अनुग्रहणता, मैं आप पर अनुग्रह करना चाहता था, आप पर कृपा करना चाहता था, सोच रहा था कैसे कृपा करूं, इनका घमंड बढ़ गया है, अभिमान बढ़ गया है, जब आप हर एक साल हमारे माता जी से, हमारे पिता से, हमारे बड़े पिताजी से, उपनंद महाराज से, गोपों से जब पूजा ले रहे थे तो आपका अभिमान बढ़ गया था कि अब तो मैं बहुत बढ़ गया। कृष्ण जिनकी पूजा करते हैं वे लोग हमारी पूजा करते हैं, आपका ही अभिमान बढ़ा था ना। आप सोचने लगे कि भगवान का बाप अब हमको पूजने लगा तो भगवान कहाँ किस गली का है। आप में इतना अभिमान बढ़ गया, आप इतना भी नहीं सोच रहे थे कि आप हमारे पिताजी से पूजन ले रहे थे। अच्छा लेते हैं तो ठीक है, लेते रहे। और जब पूजा एक साल नहीं दी गई हमारे कहने से ना, तो इस पर आप सबका नाश करने के लिए तुल गए। ये नहीं देखते थे कि इनका रक्षक कौन है, इन ब्रजवासियों का रक्षक मैं हूं, यह भी आप नहीं देख पाए। आप पर कृपा करने के लिए मैं आपका यज्ञ बंद किया था, स्पष्ट भगवान कह रहे हैं। मख भंग मया अकारी, हे भगवान आपका मख भंग जो हुआ वो मेरे द्वारा हुआ था, तो पता लगा ही नहीं होंगे आप। दूत लोग तो जाकर के कहे थे तो कृष्ण नामक लड़का है 7 बरस का नन्हा सा, उसी के बाद से सब की मति चौपट हो गई। तो मैं जो आपका मख भंग कराया, मैं कराया, क्यों कराया? अनुग्रहणता, आप पर अनुग्रह करने के लिए, आपको अपना बनाकर रखने के लिए कि आप मेरे हैं, मेरे भक्त हैं, देवता हैं, तो आप ठीक पोजीशन पर रहिए, अच्छा से शासन कीजिए। तो आपको पर अनुग्रह करते हुए मैं आपका यज्ञ बंद कराया। क्या अनुग्रह? यह अनुग्रह कि आप सदा मेरी स्मृति में रहिए, कृष्ण भावना भावित रहिए, मेरी भक्ति कीजिए, मेरी याद आपको हमेशा रहे। इसके लिए आप बहुत ज्यादा मत्त हो गए थे, जैसे कोई शराब ज्यादा पी ले तो मत्त हो जाए और कुछ ही ना पहचाने, गाली गलौज करे, बके, ये हालत आपकी हो गई थी। इंद्र पद से, अभिमान से आप पैजामा से बाहर हो गए थे। पैजामा से बाहर हो जाना तो दूसरी बात है, वास्तव में बिल्कुल स्मृति ना रहना, इस तरह से मत हो जाना। एक बार हम लोग सुना देता हूं, 1 जनवरी थी और यहां से थोड़ी दूर पर एक गांव है करमचक, वहां पर कथा थी भागवत की, तो राधा रमण महाराज भी थे, मतलब एक बस से जा रहे थे। तो 1 जनवरी को प्रायः बोतल चलता है लोगों का, जो पियाक है पीने वाले, जो नहीं भी पीते हैं वो भी उस दिन चाटते हैं, कुछ ना कुछ पीते हैं। जो नहीं पीते हैं वो लोग दूसरे का जूठा ले लेकर के प्रसाद पीते हैं, और जो पीने वाले हैं तो उस दिन स्पेशल 1 जनवरी को पीते हैं। एक व्यक्ति था बीच में चढ़ा बस में, तो खूब बक रहा था, बक रहा था, तो बस पर चढ़े हुए लोग सब लगे कहने कंडक्टर को, चुप करावा, चुप क्यों नहीं करा रहे, चुप कराओ इसको, बस में बक रहा है। तो वो वास्तव में वो जो था उसका बहनोई था कंडक्टर का, इसलिए वो बेचारा उसको डांट नहीं रहा था। तो होते होते बात बहुत बड़ी, सब लोग कह रहे थे भाई कंडक्टर के काम है ना इसको चुप करा, ये बक रहा है, इतना बक रहा है बिना मतलब के, कभी गाता था, कभी कुछ करता था, कभी बकता था, जी उब रहा था सबका। तो सबने कहा कि जो लोग इसको बंद कराओ, बंद कराओ। तो कंडक्टर बेचारा कहता है चुप रहा ना, कहा बकले बड़ा, धीरे से कहता था, धीरे से बक। तब तक तो ड्राइवर भी उद्विग्न हो गया, उस वहां तक आवाज जाती थी। तो ड्राइवर कहता है, वो जानता था कि इसका बहन रही है, चुप करावो ना, का करता रहा, काहे ना चुप हुई। तो कंडक्टर कह दिया अरे पियले बानन पिए हैं, जो बक रहा था उसके लिए कहा कंडक्टर के पी लिए हैं। तब तक ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ करके बस चल रही है, खड़ा हो गया, कहता है उहे पिए लान थोड़ी का ऐसा चटले हुई हम तो नशा आ गई, इन्हें चार चार बोतल पियाला से नशा नीखे चढ़त, मतलब मैं चार बोतल पिया हूं और हमको नशा नहीं चढ़ा है, और वो छोटा सा आधा बोतल पी लिया होगा तो उसको नशा चढ़ गया है और स्टीयरिंग छोड़ दिया है, बस जाने लगी अब गड्ढा के तरफ। हमने कहा कि अरे बाप रे, तुरंत ही कंडक्टर दौड़ करके उसके सीट पर बैठ गया धम से और वो स्टीयरिंग पकड़ लिया। ये देखिए शराब का प्रभाव। वो तो बेचारा बक रहा था, वो किसी का चाटा होगा पिया होगा थोड़ा सा, और ये तो चार बोतल पिया था सबकी जान ले लिया होता है। तो कंडक्टर तुरंत पकड़ लिया जाकर स्टीयरिंग, और फिर कंडक्टर में और ड्राइवर में झगड़ा होने लगा, असली नशा तोहरा पर चढ़ा बढ़ गया, सारा आदमी के जान ले ले रहता, सब आदमी की जान लिया होता। इस तरह की दशा हुई, इतना उसको ध्यान नहीं रहा क्रोध में कि इतने लोग मर जाएंगे। इधर के लोग जानते होंगे मलहर गांव से पहले ही जो दुर्गावती नदी पड़ती है वहां बहुत खाल है, और बस जाने लगी चट में गई, मतलब रोड के पक्का रोड के किनारे, तब तक तो कूद करके स्टीयरिंग पकड़ लिए कंडक्टर, तो बस बच गई। तो हम सब लोग हाहाकार कर चुके थे, भक्त लोग तो नमस्ते नरसिंह करने लगे एकदम। इसके बाद बस ठीक चल रही थी फिर भी कलेजा धक 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 कर रहा था सबके। इस तरह से दशा होती है। तो मत तो कहते हैं उसको जो बेहोश हो जाता है। तो शराब तो पीने पर आदमी को बेहोश करता है, लेकिन धन जो है सोना या पद वो केवल पाने से ही मत कर देता है। रहीम कभी लिखे हैं कि कनक कनकते सौ गुना मादकता अधिकाय, वापी ये बौराय नर या पाए बौराय। कनक सोना को कहते हैं और कनक धतूरा को भी कहते हैं। धतूर खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है, बौरा जाता है। लेकिन रहीम कभी कहते हैं कि जो सोना है सोना को कनक कहते हैं, यह धतूर से सौ गुना नशा चढ़ाता है, सौ गुना नशा होता है। धतूर तो खाने पर नशा उत्पन्न करता है, लेकिन यह केवल पाने पर ही, अगर ले ले आदमी और बक्सा में भी रखा हुआ है बैंक में भी, फिर भी वो नशा चढ़ा जाता है, नशा चढ़ता है धन का। तो इंद्र को यही नशा चढ़ा है, वो विशाल पद, तो उतना पद जब सारे देवता प्रणाम करते थे सबके सभा में। इंद्र की ये हालत एक बार हुई थी कि इसने अपने गुरु को सभा में आया हुआ देखकर प्रणाम नहीं किया, बृहस्पति जी को। ये मन में आ गया कि अरे तो सब ब्राह्मण आते ही रहेंगे, अब कितना खड़ा होंगे, खड़ा नहीं हुए, रोज प्रणाम करते थे उसी सभा में, खड़े होकर के उनको प्रणाम करते थे, लेकिन उस दिन सोचे कि अरे हम इतने बड़े हैं हम क्यों खड़े हैं। तो बृहस्पति जी सभा से निकल करके चले गए, दैत्यों को पता लगा कि गुरु जी छोड़ दिए हैं, तो वे लोग इंद्र पर चढ़ाई की और खूब मरम्मत की, राज छीन लिए दैत्य लोग। ये देखिए इनका मद, उस भगवान स्वयं कहते हैं कि इंद्र पद और इंद्र पद के अनुसार जो धन मिला है, कुर्सी मिली है, इसके लिए आपका अभिमान बहुत हो गया था, भृषम मत्स्य। तो इसलिए मैं जग भंग किया कि आपका मद दूर हो जाए और आप मेरा स्मरण करें, मेरी भक्ति में रहें। मामैश्वर्य श्री मदांधो, मामैश्वर्य मदांधो ही, जब उसे श्री मदांधो लिखा है, नहीं माम ऐश्वर्य मदान्धो ही इसमें लिखा गया, जो ऐश्वर्य के मद से अंधा होता है वो मुझको देख ही नहीं पाता है कि भगवान है, ईश्वर है, हमको दंड देंगे, मुझे उनके कंट्रोल में रहना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो श्रीमद से अंधा हो जाता है, पद आदि से अंधा हो जाता है, तो मुझको नहीं देख पाता है कि मैं दंड पाणी हूं, हाथ में डंडा लेकर के सामने खड़ा हूं। जैसे पशु को चरवाहा अपने बस में रखता है वैसे मैं बस में रखता हूं। कोई भी होता है, तुम हो चाहे वरुण हो चाहे कुबेर हो, इंद्र हो, जमराज जी हो, कोई भी सबका मैं शासक हूं, मैं ईश्वर हूं। तो जो मुझको नहीं देख पाता है तो मैं उसकी आंख खोलने के लिए क्या करता हूं कि उसका धन और पद हर लेता हूं, तब देखने लगता है कि ईश्वर है वास्तव में। जब धन अधिक हो जाता है और पद, जैसे कोई मंत्री बन जाना, कोई अधिकारी बन जाना, तो उस समय वो अंधा हो जाता है। श्रीमद वक्रन किन कही प्रभुता बधिरन काहे, मृगनयनी के नयन सर कोस लागिन चाहे। तो श्रीमद अंधा बना देता है, टेढ़ा बना देता है। क्यों? कि श्री जो है अर्थात लक्ष्मी जी, वो विष की बहन है। एक कवि कहता है समुद्र से लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी और समुद्र से पहले विष निकला था, तो विष की बहन है। अगर कोई विष पी ले तो ये आदमी पंगु हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा शरीर, और वो रोगी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, मर जाएगा। तो चूंकि लक्ष्मी जी विष की बहन है तो ये जिनको मिलती हैं तो वो भी टेढ़ा देखने लगता है, बोली बदल जाती है, तिरछा देखता है, अकड़ कर खड़ा होता है। इस विष का प्रभाव है, अकड़ करके खड़ा हो जाता, बोलना नहीं, पहचानता ही नहीं है किसी को। पहले पहचानता है, वोट मांगना हुआ तो, मांगना होता है तो घर घर में गली गली सभा करके इधर उधर मांगता है, कृपया सेवा का अवसर दीजिए। और इसके बाद जीत करके पटना दिल्ली गया तो अब वोट देने वालों को पहचानता ही नहीं है। कभी कभी कहते हैं चिंते हैं मैं आप वहां का हूं, वहां का हूं। अच्छा ठीक है, अब दिखाई नहीं पड़ता है। अब पटना पहुंच गया तो बस आंख बंद हो गई, तो दिल्ली पहुंच जाए तो सूरदासी हो गया। तो भगवान कहते हैं कि जो ऐश्वर्य और पद, ऐश्वर्य और धन से अंधे हो जाते हैं, तब उनकी आंख खोलने के लिए मैं पहले पद से उतार देता हूं और धन छीन लेता, तब वो आंख ठीक हो जाती है। ऐसा अंजन लगाते हैं भगवान कि एकदम साफ दिखाई पड़ने लगता है। जो हार जाते हैं वोट में, मंत्री नहीं रहे, कुछ नहीं रहे, तब फिर वोट मांगने के लिए आंख खुल जाती है। सुभाकर, एक बार और अवसर दीजिए, हमारे जैसा सेवक कर्मठ उम्मीदवार कोई नहीं है, सबको परखा बार बार, मुझको परखो एक बार बार, ऐसे लोग। और तुमको परखेंगे लोग, और वो जाएगा तब ध्यान भी नहीं रहेगा कि हमको लोग परख रहे होंगे और गाली देते होंगे, इस तरह भूल जाते हैं। तो साधारण सा उदाहरण है। फिर इंद्र का पद, जो ब्रह्मा जिसे भी मैनेजमेंट के माने में श्रेष्ठ पद है, जिससे अंधा हो जाता है, तो मैं उसको संपद से, संपद के दो अर्थ हैं, धन और पद से गिरा देता हूं। भ्रंश्यामी जस च इच्छामी अनुग्रहम, जिस पर कृपा करना चाहता हूं, जिस पर कृपा करता हूं, तो यदि वो धन के अभिमान में अंधा हो गया है, पद के अभिमान में अंधा हो गया है, तो उसको पद से और धन से गिरा देता हूं। तो मैं आप पर कृपा किया हूं, हमारा आपके साथ क्या बैर विरोध है कि मैं सब करूंगा। मैं आपको इसीलिए जगत में अपमानित किया कि आप ठीक हो जाए। अब समझ में आ रहा है ना? तो पहले प्रलय कार्य करने वाले बादलों को भेजे, मरुदगणों को भेजे और नाग पर स्थित होकर आए थे, हाथी पर चढ़कर आए थे। उस समय प्रणाम नहीं किए ना, उस समय तो हमको और सबको, पर्वत सहित सबको मारना चाहते थे, इतना अंधा हो गए थे। अब आंख खुली न ठीक से, ये तो देखना चाहिए सबको कि वास्तव में कोई भगवान है, कोई जगत का कंट्रोलर है। आज हम हैं, कल मृत्यु हो जाएगी, कल दरिद्रता आ जाएगी, कई रोग हो जाएगा, ये सब मनुष्य को देखना चाहिए। तो भगवान यही बात कहते हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूं तब उसको संपत्ति से और पद से गिराता हूं। दंड पाणी माम न पश्यति, अंधा आदमी मुझको नहीं देखता है, मैं दंड पाणी हूं। श्री कृष्ण हमेशा गाय चराने के लिए डंडा लिए रहते हैं। तो दंड पाणी का डायरेक्ट अर्थ हुआ कि हाथ में डंडा लिए रहते हैं, गाय चराते हैं, पर दंड पाणी होने के कारण, गाय चराने के कारण मूर्ख लोग मुझे नहीं पहचान पाते हैं। कहते हैं ये तो वही रहे गाय चरा रहा है, ये क्या भगवान हो सकता है। लेकिन दंड पाणी जमराज को भी कहते हैं, दंड पाणी न पश्य, तो वो भी बहुत बड़ा डंडा लिए रहते हैं। भगवान तो छोटा डंडा लिए रहते हैं। तो इंद्र को भय था कि भगवान मारेंगे, चाहे अरेस्ट करेंगे, किसी से पिटवाएंगे। तो भगवान ने हंसते हुए कहा, गम्यताम शक्ल भद्रम, आपका हित हो आप जाइए, आप जाइए, अपने घर जाइए। उनको डर था कि भगवान पिटवाएंगे, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं किया। इन बात कहकर के कहे कि जाइए, गम्यताम शक्ल भद्रम, आपका कल्याण हो। नहीं, इंद्र ने कह दिया कि तब हमको अपना बनाना चाहते हैं, अनुग्रह करना चाहते हैं, तब प्रभु हम भी गोपों की तरह आपके साथ ही रहेंगे और हम भी एक चरवाहा बनकर गाय चराएंगे, चाहे आपका सेवक बनकर ब्रज में रहेंगे, तो हमको भी अगर सच्चा अनुग्रह करते हैं तो हमको ब्रज में रहने दीजिए। तो भगवान ने कहा नहीं, वो भी काम देखना है, लेकिन थोड़ा हिसाब से देखो, ठीक होकर गम्यताम, अब आप जाइए, हे सौ यज्ञ करने वाले, आपका पद आपकी योग्य है, आप इंद्र पद पर हैं, जाइए, आपका कल्याण हो। क्रियतम में अनुशासनम, वहां रह करके मेरे आज्ञा के अनुसार चलिए, मैं अनुशासनम, मेरी आज्ञा मान करके याद रखिए, स्थियतम स्वाधिकार इसमें, और अपने अधिकार में रहिए, अपने अधिकार में, अपने कर्तव्य में रहिए। आपका ये काम नहीं है कि आप गौओं का वध करें, ये तो मलेच्छों का काम होता है, जवनों का काम होता है गाय का वध करना। आप एक देवता हैं, आप अपने अधिकार में रहिए और दूसरों को अधिकार के अनुसार जीने दीजिए, जियो और जीने दो। आप अपने पद पर रहिए, अपना कर्तव्य देखिए, उसके अनुसार काम कीजिए, और जुगतर व स्तंभ वर्जित। और बहुवचन का प्रयोग भगवान कर रहे हैं कि आप जाइए और वहां अनेक आपके भाई हैं, जैसे वरुण आदि, आप लोगों के द्वारा चाहिए कि आप अपने अधिकार में रहिए, आप सभी अपने अपने अधिकार में, बिल्कुल इसे बाहर मत जाइए, मर्यादा में रहिए। तो जब भगवान इंद्र ने यह सुना तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, भगवान को पूरा प्रसन्न देख ले, भगवान आशीर्वाद ही दे रहे हैं। तो इसके बाद इंद्र वहां अभिषेक किए भगवान का, बहुत बड़ा उत्सव हुआ। भगवान श्री कृष्ण के इस अभिषेक की वार्ता जब कोई सुनता है तो उस व्यक्ति के जीवन में धन बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, उसका सौभाग्य बढ़ता है। भगवान का अभिषेक किया गया, और अभिषेक करने के बाद क्या प्रभाव हुआ सारी सृष्टि पर, सब सुखी हो गए, इसका वर्णन भी सुखदेव गोस्वामी किए। तो भगवान के अभिषेक का वर्णन दोपहर के बाद किया जाएगा। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।